Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Radha Madhava Javihari Jaya Radha Madhava Javihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Radha, Giridhare Radha, Giridhare Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura. जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तेर्भवति नैश्चिकी। ओम ज्ञातमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्मीष्टमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाष्टपादान् सगणलिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगि राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज एकादशी है। एकादशी के दिवस हम जो दूसरे प्रकार के भागवत है भक्त भागवत उनकी चर्चा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक है ग्रंथ भागवत दूसरा है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत क्या है? रस है। और भक्त भागवत जो है वो रस का पात्र है। जैसे अगर कोई रस को प्राप्त करना है स्वीकार करना है तो उस रस को हम केवल एक पात्र के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार इस ग्रंथ भागवत तो अगर स्वीकार करना है और उनको प्राप्त करना है तो केवल भक्त भागवत नामक पात्र के द्वारा ही हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो हर एकादशी को हम श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत का श्रवण करते हैं। आज भी उसी प्रथा के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत का श्रवण करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जो भक्त भागवत जो भागवत के जो रस पात्र है उस पात्र के जो भागवत है भक्त भागवत महान आचार्य वो किस अवस्था में और कैसे उनके शिष्य को अपना भागवत का रसामृत कराते हैं उस विधि के बारे में चर्चा करते हैं। उस विधि को कहा जाता है दीक्षा, क्योंकि कल हमारे मंदिर में हिसोरी ने श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दीक्षा का समारोह हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके विषय में मैं सभी भक्तों को अवगत कराऊं जो दीक्षा ले चुके हैं और जो कल ले रहे हैं और आगे भविष्य में लेने वाले हैं, उन सबको ज्ञान होना चाहिए कि क्या है दीक्षा, व्हाट इज दिस इनिशिएशन। एक और एक उत्सव है क्या, और एक प्रकार का मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन जैसा है क्या, इसका महत्व क्या है और उस दिन होता क्या है, उन चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके संबंध में एक श्लोक लिखा हुआ है दीक्षा के विषय में, जिसको टेक्निकली पंच संस्कार कहा जाता है। तो ये जो श्लोक है स्मृति शास्त्रों से श्लोक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे बाद इस श्लोक को उच्चारण करें और उसके बाद हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का लीलामृत में श्रवण करेंगे, उसके बाद हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ताप पुण्ड्रम तथा नामा, ताप पुण्ड्रम तथा नामा, मंत्रो यागश्च पंचमः, मंत्रो यागश्च पंचमः, अमीहि पंचसंस्कारः, अमीहि पंचसंस्कारः, अमीहि पंचसंस्कारः, परमेकान्तिहेतवः, 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 तापपुण्ड्रं नमा तथा नाम, तापपुण्ड्रं तथा नाम, मंत्रो यागश्च पंचमः, मंत्रो यागश्च पंचमः, अमीहि पंचसंस्कारः, अमीहि पंचसंस्कारः, परमेकान्तिहेतवः, परमेकान्तिहेतवः, तापपुण्ड्रं तथा नाम, तापपुण्ड्रं तथा नाम, मंत्रो यागश्च पंचमः, मंत्रो यागश्च पंचमः, अमीहि पंचसंस्कारः, अमीहि पंचसंस्कारः, परमेकान्तिहेतवः, परमेकान्तिहेतवः, तापपुण्ड्रं तथा नामम्, मे पञ्चसंस्कार, परमेकान्ति एतव, तापपुण्ड्रं तथा नाम, तन्त्रो यागश्च पञ्चमः, अमेहि कंतसंस्कार, ममे कांति हेतवः, पापुन्द्रं तथा नाम, तो यश्च पञ्चमः, मेहि पञ्चसंस्कार, धर्मे कान्ति हेतवः, అభపుండ్రం దతానామ తంత్రో యజ్ఞశ్చ పంచమ మిహి మంత్ర సంస్కార మమే కాంతి హేతవః మంత్రో యజ్ఞశ్చ పంచమ తమేహి పంచ సంస్కార పరమేకాంతి హేతవః తాప పుండ్రతతా నామ మంత్రో యజ్ఞశ్చ పంచమ పంచ సంస్కార ఏకాంతి హేతవః తాప పుండ్రతతా నామ మంత్రో యాగశ్చ పంచమ మే పంచ సంస్కార పరమేకాంతి హేతవః మంత్రోయాగశ్చ పంచమ అమేహి పంచ సంస్కార మమేకాంతి హేతవః పాపుండ్రం దదానామ మంత్రోయాగశ్చ పంచమ మంత సంస్కార ప్రమేకాంతి హేతవః నాగపుండ్రం దదానామ మంత్రో యాగశ్చ పంచమ సంస్కార ప్రమేకాంతి హేతవః పాపపుండ్రం దదానామ మంత్రో యాగశ్చ పంచమ అమేహి పంచ సంస్కార అగ్నికాంతి హేతవః పాపపుండ్రం దదానామ మంత్రో యాగశ్చ పంచమ అమేహి పంచ సంస్కార పరమేకాంతి హేతవః తాప పుండ్రం దదానామ మంత్రో యాగశ్చ పంచమ అమేహి పంచ సంస్కార పరమేకాంతి హేతవః తాప పుండ్రం దదానామ మంత్రో యాగశ్చ పంచమ అమేహి పంచ సంస్కార పరమేకాంతి హేతవః తాప పుండ్రం దదానామ మంత్రో యాగశ్చ పంచమః అమేహి పంచ సంస్కారః పరమేకాంతి హేతవః తాప పుండ్రం దదానామ మంత్రో యజ్ఞశ్చ పంచమ అమే పంచ సంస్కార పరమేకాంతి హేతవః హరే కృష్ణ. పహలా హమ్ శీల ప్రభుపాద్ జీ కా లీలామృత్ సే వో ప్రసంగ్ చర్చా కరేంగే జబ్ శీల ప్రభుపాద్ జీ నే దీక్షా లియా. కుచ్ లోగ్ కుచ్ ఐసే భక్త హోతే హై वो कहते हैं मैं तो भक्ति कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करता हूं और सेवा भी करता हूं, तो मुझे दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब यह है कि श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने दीक्षा लिया, क्या हम श्रील प्रभुपाद जी से बड़े भक्त हैं? दूसरी बात, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं दीक्षा ग्रहण किए तो क्या हम भगवान से बढ़कर हैं? तो महान आचार्य नित्य सिद्ध होते हैं, भगवान स्वयं जब इस धराधाम में प्रकट होते हैं सारे जगत को एक उदाहरण रूप में प्रस्तुत करने के लिए, वो स्वयं एक गुरु को स्वीकार करते हैं और उनसे दीक्षा को ग्रहण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का मुलाकात हुआ था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ 1922 में, और 10 साल उनके प्रति इतना गाढ़ प्रेम और आसक्ति प्रकट हुआ। तो एक दिन 1933 की बात है, नवंबर 21, उस दिन प्रभुपाद जी अलाहाबाद में थे और मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो रहा था, जैसे इधर भी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत व्यस्त थे अनेकों कार्यों में, उनकी फार्मेसी चलाने में, उनका खुद का बिजनेस था, परिवार को देखभाल करने में, लेकिन ये सारी व्यस्तता को बाजू में रखते हुए मंदिर का निर्माण कार्य के लिए रोज शाम को उस इलाहाबाद के जो गौड़िया मठ है उसका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम था अतुलानंद, अतुलानंद दास के पास, इस प्रेसिडेंट के पास अभय चरण उस समय प्रभुपाद जी का नाम, रोज कम से कम 4-5 लोगों को लेके आते थे, लेके आके मुलाकात कराते थे और वो मंदिर के बारे में भगवान के बारे में कुछ कहते थे, और प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारा कर्तव्य बनता है ये मंदिर का निर्माण कार्य करना, तो मंदिर में निवास करते हैं साधु और उनको सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है। तब वो 4-5 जो गेस्ट थे वो कहते थे ठीक है हमारी ओर से आप, उस समय 1000 रुपये भी बड़ी बात होता था, देखिए कब की बात है, ये 1933 की बात है, कोई कुछ कमिटमेंट करता था, कोई कुछ कमिटमेंट करता था। तो श्रील प्रभुपाद जी वो कहते थे कि बहुत एक्सपर्ट व्यापारी थे, तो क्या कहते थे कि अरे आप, आपके लिए तो इज्जत का सवाल है, अगर आप इतना ही देंगे तो आपका नाम खराब होगा। ऐसा कुछ जादू करते हुए, कुछ ऐसे ऐसे कुछ चमत्कारी शब्द इस्तेमाल करते हुए लोगों को ऐसा मोहित कर देते थे कि सबसे ज्यादा लोग जो है मंदिर के निर्माण के लिए वो धन एकत्रित करे। तो ऐसा हुआ दो साल तक इस प्रकार होता गया। तो अतुलानंद के पास प्रभुपाद जी पहुंचे, एक दिन जाके उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि दीक्षा का समारोह हो रहा है तो मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो अतुलानंद दास प्रभुपाद जी को उस दिन कहे, यानी उस समय भव्य चरण को कहे कि आप उसका चिंता मत करो, मैं आपको भक्तिजान ठाकुर के साथ मैं परिचित करा दूंगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा उसका। तो ये जो सिस्टम है कि गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के ग्रहण करना, इसका जो सिस्टम है, ये जो आजकल इस्कॉन में जो प्रचलित है, ये ऐसा नहीं कि ये नया बात है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में भी, एक गौड़िया मठ में भी इसी प्रकार का था। मुझे कल एक भक्त ने मुझे पूछा कि प्रभु जी अगर गुरु हमको दीक्षा देना चाहते हैं और मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूं, आप ये बीच में मंदिर वाले होते कौन हैं कि इनको रोकने वाले? तो ये बहुत उनको समझाने के लिए प्रयास किया। तो प्रयास करने के बाद मैं पढ़ रहा था, या मुझे कुछ याद है प्रभुपाद जी किस प्रकार दीक्षा ग्रहण किए। उस समय में प्रभुपाद जी मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं करके वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास नहीं गए, उस मंदिर के अध्यक्ष के पास गए। अतुलानंद ने कहा कि आप उसका चिंता मत करो, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि हमारे जो गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उनके द्वारा मैं आपको दीक्षा दिलवाऊंगा। और जैसे अभय चरण प्रभुपाद जी को ऐसे खबर प्राप्त हुआ, वो तुरंत गए, घर में गए, घर में जाके उनकी पत्नी को कहे, बहुत आशा रखे थे कि मेरी पत्नी भी साथ में दीक्षा ग्रहण करेगी। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी को कि मैं दीक्षा ग्रहण कर रहा हूं, तो अगर आप भी साथ में ग्रहण करोगे तो अच्छा रहेगा। उनकी पत्नी ने कहा हम तो थोड़ा बहुत जप कर लेते हैं, भगवान को तो भोग लगाते, पूजा तो चल ही रहा है, तो मैं तो नहीं ग्रहण करूंगी, मैं मुझे कोई रुचि नहीं है। तो प्रभुपाद जी इस बात को सुन के हताश नहीं हुए, तो उन्होंने सोचा ठीक है अगर उनको नहीं लेना है तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसी जन्म में भगवान की धाम में जाना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा, क्या किया, नो आई विल टेक इट। दे बिलीव इन गॉड एंड वर लिविंग पीसफुली, लिखा गया है कि वो शांति से जीवन यापन कर रहे थे। तो अगर शांति से भगवान की पूजा करते हुए जप करते अपना जीवन यापन कर रहे तो ये दीक्षा की क्या आवश्यकता है। लेकिन प्रभुपाद जी अपने आचरण से दिखाया नहीं, इससे बढ़कर है। बट फॉर अभय इट वॉज नॉट एनफ। शांति से घर में बैठे बैठे थोड़ा सा नाम जप कर लिया, थोड़ा सा भोग लगा के भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, ये काफी नहीं है, इससे बढ़कर कुछ करना है। Although he would not force his wife, he knew that he must be initiated. उन्होंने अपनी पत्नी को जबरदस्ती नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अगर शुद्ध भक्त के द्वारा जब तक दीक्षा प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। Avoiding sinful life, living piously, these things were necessary and good. जैसे पाप कार्य को त्याग करना और एक शुद्ध जीवन यापन करना ये अच्छी बात है, ये जरूरी है। But in themselves they did not constitute spiritual life. ये अपने आप में आध्यात्मिक जीवन नहीं है। जैसे शाकाहारी जीवन भोजन ग्रहण करना, अच्छा रहना, समृद्ध रहना, थोड़ा बहुत दान धर्म कर देना, ये सब अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन ये काफी नहीं है। And could not satisfy the earning of the soul. जो आत्मा का जो तीव्र इच्छा है, तीव्र पुकार है और उनकी जो लालसा है वो संतुष्ट नहीं हो सकता इस प्रकार की तथाकथित सात्विक जीवन से। लाइफ अल्टीमेट गोल एंड एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ लाइफ वाज लव कृष्ण, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना जो है ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। दैट लव फॉर कृष्ण हिज फादर हैज ऑलरेडी इनकल्केटेड इन हिम। अभय चरण सोच रहे कि मेरे पिता मुझे दिए हैं एंड नाउ ही हैज टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, मुझे और एक कदम उठाना है। His father would have been pleased to see him do so. वो सोच रहे प्रभुपाद जी अगर मैं ये कदम लेते हो, अगर मेरे पिताजी देखते हैं तो तुरंत वो प्रसन्न हो जाते। आपको याद है श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी वो बार बार सारे साधुओं से निवेदन करते थे कि मेरे पुत्र जो अभय चरण है उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि उनको राधारानी का कृपा प्राप्त करे। तो ये राधारानी का कृपा कैसे प्राप्त होता है, कौन है श्रीमती राधारानी? श्रीमती राधारानी जो है आदि गुरु है और हमारे गुरु हैं वो श्रीमती राधारानी की विस्तार है। और गुरु का कृपा का अर्थ क्या है, हमको दीक्षा प्राप्त होना गुरु का कृपा का अर्थ है। और श्रीमती राधारानी का कृपा का अर्थ है कि दीक्षा प्राप्त होना। तो अभी अभय चरण उस बात को सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी का जो प्रार्थना है, प्रत्येक साधु जो भी मिलते थे उनसे प्रार्थना करते थे कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए ताकि उनको राधारानी का कृपा प्राप्त हो। अभी वो प्रभुपाद जी इसको स्मरण कर रहे हैं कि अभी मुझे वो राधारानी का जो कृपा है अभी प्राप्त होने वाला है। What he had learned from his father was not being solidified by someone capable of guiding all the fallen souls of the world to transcend the love of God. Abhay knew he should go forward and take complete shelter in the instructions of his spiritual master. तो वो अपने आप को विचार करते और दृढ़ संकल्प धारण कर रहे कि मस्त मुझे आगे जाना है और मेरे गुरु का जो शिक्षाएं हैं उनके आदेश है उनको पूर्ण तरीके से अपने जीवन में उतारना है। एंड द स्क्रिप्चर्स एंजॉइन ही हु इज डिजायर ऑफ नोइंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ मस्ट टेक शेल्टर द स्पिरिचुअल मास्टर हु इज इन डिसिप्लिन सेक्शन एंड हु इज फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसे उपनिषदों में कहा गया है, क्या कहा गया, तस्मात गुरुम प्रपद्यायता जिज्ञासु श्रेय उत्तम। ये कहा गया है जो ब्रह्मनिष्ठम जिस जो जो गुरु ब्रह्म निष्ठा, ब्रह्म के प्रति निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, जो परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उस गुरु के पास जाके है क्या करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए और उनसे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। अरे प्रभुपाद जी ये सब बातों को मनन कर रहे अपने आप में, अपने मन में। अभी दीक्षा प्राप्त होने वाला है तो दीक्षा प्राप्त होने के पहले एक शिष्य का मनोभावना क्या होना चाहिए, एक दृढ़ता को प्राप्त करना चाहिए। दृढ़ता कैसी आती है, इस प्रकार के श्लोकों के ऊपर अपना जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने की जो श्लोक है, उन बातें हैं, इन बातों के बार बार विचार करने के द्वारा होता है। तो प्रभुपाद जी ने सोचा, इवन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हु वाज कृष्ण हिमसेल्फ, जो कृष्ण स्वयं है, एक्सेप्टेड स्पिरिचुअल मास्टर, वो अपने दीक्षा ग्रहण किए। और जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु दीक्षा ग्रहण नहीं किए तब तक उन्होंने कृष्ण के प्रति भावपूर्वक लक्षणों को प्रकाशित नहीं किए। एंड ओनली आफ्टर इनिशिएशन डिड ही मैनिफेस्ट द फुल सिम्टम्स ऑफ एक्सटेटिक लव ऑफ गॉड, लव ऑफ कृष्ण व्हाइल चैंटिंग द होली नेम्स। जब भगवान के नामों को जप करना, जप करने के समय जो भाव के लक्षण, प्रेम के लक्षण चैतन्य महाप्रभु दीक्षा के बाद ही प्रकाशित किए, तो मुझे अवश्य लेना है, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी संकल्प किए। As for the ritual initiation, he has received at age of 12. कुछ लोग इस बात को कहते हैं, अरे हमारा तो हो गया था, ब्रह्म संबंध हो गया था, 12 साल की उम्र में हो गया था। तो उधर इसके बारे में कहते हैं, अभय had never taken it seriously. तो उस बात को जो है अभय चरण प्रभुपाद इसको सीरियसली लिए नहीं है। हम सबको मालूम है कभी ना कभी बचपन में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो जो है वो सीरियस बात नहीं है, ये तो ऐसे कुछ प्रथा है, सामाजिक प्रथा है, उस प्रकार हो गया है। It has been a religious formality, but a guru was not a mere officiating ritualistic priest. So Abhay had rejected the idea that he had a guru. Abhay Charan ne kya kiya, Prabhupada ji ne, mere paas pehle diksha ho chuka, is prakar ka manograhan jo dharana hai, usko unhone tyag kar diya. Khas karke bahut sare logon ke man mein is par vichar rehta hai, Prabhu ji, main to bachpan mein dharan kiya tha. तो मैं जनरली पूछता हूं कि उसने क्या सिखाया आपको, सिखाना क्या, मैं उनको तो आज उसके बाद देखा भी नहीं उनको, हा? तो क्या फायदा है ऐसे गुरु का। तब अभी प्रभुपाद जी ने ऐसे गुरुओं को सीरियसली स्वीकार नहीं किया। मैं अभी जानता हूं एक भक्त को जो इस बात के लिए वो 5 साल तक वो दीक्षा के लिए मना कर रहे थे, नहीं नहीं लूंगा, मेरा हो गया था गुरु। तो मैं एक दिन उनको इतना झाड़ा तो सारा भूत उसको निकल गया। अस्तित्व में ये जो मन में एक प्रकार का भूत बैठ जाता है। मैंने उनको कहा, आप दीक्षा क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते हो मालूम है, क्योंकि आप कमिटेड नहीं होना चाहते हो, आप बंधन में नहीं आना चाहते हो। आई डोंट वॉन्ट टू बी कमिटेड। जैसे मैंने उदाहरण दिया उनको, जैसे एक पुरुष, एक लड़का है, उसका और एक लड़की से प्रेम हो गया, दोनों बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और वो लड़की कहती है वो लड़के से, अभी समय बहुत हो गया, हमको शादी करना है। तो लड़का कहता है, क्या जरूरत है शादी का, जैसे शादी के बाद जो भी होता है, जो भी हम लोग जैसे व्यापन करते हैं, तो अभी कर रहे हैं ना, क्या जरूरत है। तब कोई भी बुद्धिमान स्त्री उसके साथ रहेगी, उसके साथ और समय बिताएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये कभी भी विश्वासघात कर सकता है, वो बंधन में नहीं आना चाहता है। बंधन में क्यों नहीं आना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, उनका दृढ़ता नहीं है। मैं इस बात को उदाहरण देकर उनको समझाया कि हमको हमेशा ऐसे गुरु की इच्छा रहता है। किस प्रकार का गुरु चाहिए, जो हमेशा मेरा बखान करे, अगर नहीं तो कम से कम ऐसा गुरु चाहिए केवल जो फोटोग्राफ में रहे। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमको कोई गुरु को धारण करने की जरूरत नहीं है, दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी गुरु है। क्यों, प्रभुपाद जी तो आके आपको डांटने वाले नहीं है, ये आके देखने वाले नहीं है आप जप कर रहे हो कि नहीं, आप नियमों को पालन कर रहे हो कि, देखने वाले नहीं है। तो ये हमारी बद्ध अवस्था का लक्षण है कि हम चाहते हैं कि बंधन में ना आए, और साथ साथ में हम ऐसे गुरु चाहते हैं जो केवल फोटोग्राफ में हो, अभी नाम उनसे मिले, क्योंकि मिलेंगे तो पता लग जाएगा मैं कौन हूं, अगर मिलेंगे भी तो बस प्रणाम करके भाग जाओ, आशीर्वाद लेके भाग जाओ, ना सुनो ना उनके साथ मत रहो, सेवा करना है तो थोड़ा बहुत दक्षिणा दे दो। तो इस प्रकार की मनगढ़ंत विचार है गुरु के बारे में, हमको अपने मन से निकाल देना चाहिए। तो इन सब बातों को उस वक्त के ऊपर झाड़ा, बाद में थोड़ा सा उनको मति आई तो वो बाद में दीक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हुआ। तो आगे
Srila, but by taking initiation from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he would be linked with Krishna. Krishna ke saath uska sambandh judta hai. Diksha ka arth hai, Krishna ke saath sambandh jodna. Sambandh gyan us din ek utsav ke roop mein prakashit hota hai, usko diksha kaha jata hai. So aage, to Srila Gaur Kishore Das Babaji was the guru of the 12th disciplic generation from Lord Chaitanya. He was the foremost Vedic scholar of the age, the expert Vaishnava, who could guide one back home, back to Godhead. He was empowered by his predecessors to work for the highest welfare by giving everyone Krishna consciousness, the remedy of all sufferings. Abhay felt that he had already accepted Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his spiritual master, and that from that very first meeting, he had already received his orders. Now, if Bhaktisiddhanta Thakur would accept him as a disciple, the relationship would be confirmed. This is a very important statement, a very important line. Srila Prabhupada ji, the first time when Bhaktisiddhanta Thakur ke saath unka mulaqat hua, jaise unka mulaqat hua, Abhay Charan us samay kuch bolne se pehle hai. To kya hua tha? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dekhte unko kaha, Abhay Charan ko, aap bade likhe dikhai padte ho. Aapko kya karna chahiye? आपको विश्व भर में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाओं को प्रचार करना चाहिए. तो अभय चरण को ऐसा लगा, क्या है ये, ना जान ना पहचान. तो तब उनके साथ थोड़ा सा संवाद हुआ, संवाद सब जानते हैं. श्रील बक्सियंस ठाकुर को उन्होंने कहा, अभय चरण ने कहा कि अभी तो सबसे जरूरी है हमको स्वतंत्रता चाहिए. स्वतंत्रता के बाद ही हम प्रचार कर सकते हैं. अभी प्रचार करने से हमारा प्रचार जो है सफल नहीं हो पाएगा. तो श्रील बक्सियंस ठाकुर ने कहा कि आध्यात्मिक कार्य जो है, प्रचार जो है, कोई भौतिक अवस्था के ऊपर आधारित नहीं है. हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है. देश की जो सामाजिक स्थिति है, देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसके ऊपर आधारित नहीं है. प्रचार जो है दिव्य कार्य है. वो दिव्य कार्य कोई भी भौतिक स्थिति के ऊपर आधारित नहीं है, ना आर्थिक स्थिति के ऊपर. अरे मैं तो गरीब हूं, पैसे नहीं है, प्रचार कैसे होगा? होगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है वो भौतिक है और प्रचार कार्य जो है आध्यात्मिक कार्य है. तो श्रील बक्सियंस ठाकुर इतना पावरफुल समझाए, तो बक्सियंस ठाकुर का इन बातों को सुन के अभय चरण विचार करने लगे कि अस्तित्व में ये मेरे गुरु है. अपने मन में उनको स्वीकार कर लिए थे, लेकिन अभय चरण अभी क्या सोच रहे हैं, प्रभुपाद जी कि अगर मुझे बक्सियंस ठाकुर दीक्षा देंगे तो मैं जिनको गुरु के रूप में चुना है, अभी वो मुझे चुनेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा. तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं गुरु को पहला स्वीकार करना चाहिए, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए. बाद में जब गुरु दीक्षा के दिन क्या करते हैं, कन्फर्म करते हैं. जैसे कन्फर्म करते हैं उसको, तुम्हारे जो मन में जो विचार है कि मुझे तुम गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हो, ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है, ये सही बात है, इस बात को उस दिन दीक्षा के दिन गुरु कहते हैं. तो ही वॉज कमिंग सून आफ्टर अभय हैड सीन एंड हर्ड हिम इन वृंदावन. अभी एक महीने पहले ही श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में बक्सियंस ठाकुर के साथ मुलाकात हुआ. वृंदावन में बक्सियंस ठाकुर कोशी में वो प्रवचन दे रहे थे. एक दिन बक्सियंस ठाकुर बीमार थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, नजदीक में शेषशाही मंदिर है, आप चाहे तो दर्शन कर सकते हो. मैं आपके साथ परिक्रमा में नहीं आ सकता हूं, लेकिन मैं पूरा दिन इधर बैठ के मैं प्रवचन देता रहूंगा, जिसको जाना है जा सकते हैं. तो सारे लोगों ने, शिष्यों ने, सन्यासी शिष्य और बहुत सारे शिष्य थे, वो सब लोगों ने कहा, अरे हम तो वृंदावन आए नवद्वीप से, पता नहीं कब वापस वृंदावन आएंगे, चलो चलो दर्शन करने चलते हैं. तो सब लोग दर्शन करने गए, लेकिन अभय चरण क्या किए, भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर के सामने बैठ के वो प्रवचन सुन रहे थे. शायद ही चार पांच लोग बैठ के सुन रहे थे. भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर वैसे सिंह गुरु जैसे गर्जना करते हुए उन्होंने प्रवचन करना शुरू किया. उस दिन का प्रवचन खास करके किसी को समझ में नहीं आ रहा था. जो चार पांच लोग थे, कोई आता था कोई जाता था, लेकिन अभय चरण बैठ के सुनते थे. पूरा दिन बैठ के उनके प्रवचन सुना. तो बक्सियंस ठाकुर इस बात को नोट किए, ये अभय चरण सुनता है बराबर. बाद में बक्सियंस ऑन द डे ऑफ सेरेमनी, अभी दीक्षा का दिन आया, बक्सियंस ठाकुर मेट विद हिज डिसिपल disciples at Allahabad Gaudiya Mutt on South Malacca Street. Allahabad ke jo Gaudiya Mutt hai, udhar Bhaktisiddhanta Thakur dupair ko unse mulaqat ki. While you are speaking Harikatha and taking questions, wo Harikatha kar rahe the, aur beech beech pe bahut sare prashnotri bhi chal raha tha. Atul Anand Brahmachari took the opportunity to present several devotees. Us din, udhar ke jo Mutt ke president hai, wo sare bhaktaon ko leke gaye, aur Bhaktisiddhanta Thakur se milane ke liye leke gaye. Abhay amongst them as a candidate for initiation. Un sare bhaktaon ke saath Srila Prabhupada ji bhi the. Us diksha ke samaroh mein. To Srila Prabhupada ji sabke saath unhone diksha grahan kiya. At Allahabad, devotees were proud of Mr. Day. Lekin sare jo bhakt the wo bhale hi usi din diksha le rahe the aur anya bhakton ke saath Prabhupada ji ka usi time diksha le raha tha. प्रभुपाद जी दीक्षा ले रहे थे, लेकिन उस समय सारे जितने भक्त थे वो सबको एक प्रकार का विशेष अनुभूति हो रहा था. वाह, अभी मिस्टर डे, अभय चरण डे ना उनका नाम, अभी वो दीक्षा ले रहे, बड़ा खुशी की बात है. क्यों? क्योंकि सारे जितने भी अन्य भक्त होते हैं दीक्षा ले रहे या जो नहीं जो लिए हुए है या अन्य जो लोग है, सारे भक्त, अगर कोई एक विशिष्ट भक्त, अगर कोई अच्छा भक्त उस दिन दीक्षा लेता है तो उसको देख के बड़ा मन होता है, देखो ये हमारे पास में आ गया, देखा हाँ, अभी कहीं और का नहीं है, हमारा हो गया अभी. जैसा होता है ना, कोई कोई पार्टी होता है, वो पार्टी में दूसरे पार्टी का कोई लीडर जो है या महत्वपूर्ण व्यक्ति इस पार्टी में आ जाता है तो बड़ा गर्व का महत्वपूर्ण, देखो ये हमारे पार्टी में आया. तो वैसे ही अभी तक माया को बहुत सारा सेवा वगैरह कर रहा था, अभी उसको छोड़ के हमारी पार्टी में जुड़ गया. तो इसलिए दे वर वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर डे. क्यों? हु रेगुलरली अटेंडेड द मट इन द इवनिंग्स. देखिए मिस्टर डे इलाहाबाद में प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, अभयचरण कि रोज शाम के समय में आते थे एंड लेड भजन्स, वो भजन को लीड कर रहे थे. तो मैं इस बात को एक बार चर्चा कर रहा था, एक भक्त ने कहा है नहीं ये मंदिर में कीर्तन नहीं कर सकता, क्यों उनको दीक्षा नहीं हुआ. तो मैंने कहा देखिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, who regularly attended the matta in the evenings, and led bhajans, वो भजन गा रहे थे, listened to the teachings and spoke to them himself, and often brought respectable gifts. He had contributed money and had induced his business colleagues also to do so. देखिए प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि हमने तो खाली वो उनको सन्यास जी के रूप में, गुरु के रूप में उनके ग्रंथों को पढ़े. जब एक कांग्रीगेशन भक्त के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्या किए प्रभुपाद जी वो भी सीखना चाहिए, क्योंकि अनेकों लोग कांग्रीगेशन भक्त है इधर बैठे है. तो उन्होंने क्या किया देखिए, ही कंट्रीब्यूटेड मनी, वो स्वयं अपना धन को दिए, और साथ साथ में हैड इंट्रोड्यूस हिज बिजनेस कोलिग्स, उनके जो व्यापार के जो संबंधी मित्र हैं उन सबको क्या किया, वो मठ में लेके आए हैं प्रभुपाद जी, और क्या किए उनको भी बताया, हे आप भी दो, आप भी धन दो. एंड ही एंड भक्तिसंत ठाकुर नाउ वर फेस टू फेस. भक्तिसंत ठाकुर बैठे हैं और सारे जितने भी दीक्षा लेने वाले हैं वो सब सामने हैं, और उसमें सामने कौन है, अभय चरण, वो और भक्तिसंत ठाकुर दोनों आमने सामने हैं. With folded hands, folded palms, हाथ जोड़ते हुए, अभय looked up humbly to his spiritual master. बहुत दीन भाव से, बहुत नम्र भाव से उनके आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ओर उन्होंने देखा. He and श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर were now face to face, and भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर recognized him. श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको पहचान लिए, recognized him, and was visibly pleased to see him. उनको बहुत प्रसन्नता हुई अभय चरण को इस प्रकार देखते हुए. एंड ही ऑलरेडी न्यू हिम, वो पहले जानते थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी कौन है, अभय चरण कौन है. तो जैसे उन्होंने देखा प्रभुपाद जी अभय चरण को देखे, भक्तिसिद्धांत ठाकुर देखते उन्होंने कहा यस हाँ, ही सेड एक्सचेंजिंग लुक्स विद अभय, उनके दृष्टि जो है उनके बीच में आदान प्रदान हो रहा था. देखते उन्होंने कहा यस ही लाइक्स टू हियर, वो सुनना चाहते हैं, वो सुनने की इच्छुक है. ही डज नॉट गो अवे, मोबाइल फोन आया करके भाग नहीं जाता इधर से. आई हैव मार्क्ड हिम, मैंने उनको चुना है, आई विल एक्सेप्ट हिम एज माई डिसाइपल, मैं उनको आज मेरे शिष्य के रूप में चुनूंगा। ये श्रील भक्तिसिद्धांत सरस ठाकुर के कथन है। क्या कहा बाबा को देख के, ही लाइक्स टू हियर, ने क्या क्या देखा, ये सुनना चाहते हैं। दूसरी बात, ही नेवर गोज अवे, ऐसा नहीं कह रहे बहुत हो गया चलो, नहीं। तीसरी बात, आई हैव मार्क्ड हिम, मैंने उनको देखा है, आई विल एक्सेप्ट हिम एज माय डिसाइपल एज द मोमेंट्स द होल वर्ल्ड एज द मोमेंट एंड द वर्ड्स बिकेम इंप्रेस्ड इनटू दिस बीइंग, अभय वाज इन एक्सटेसी। जैसे शब्द गुरु की जो प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ, ये शब्द अभय चरण के हृदय में प्रवेश किया, उनके हृदय में एक दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। अतुल आनंद वॉज प्रेजेंटली सरप्राइज दैट हिज गुरुदेव वॉज ऑलरेडी इन अप्रूवल ऑफ मिस्टर डे। उधर के प्रेसिडेंट सोचने लगे, अरे क्या हो गया, पहले से ही आप अप्रूव कर दिए क्या? अतुल आनंद वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, उनको आश्चर्यचकित हो गए और उनको बहुत कुछ लगा, रे अभय चरण को अच्छी तरह जानते हैं। Other disciples in the room were also pleased to witness Bhaktisiddhanta Thakur's immediate acceptance of Mr. Day. जाति इतनी बावर शिष्य हैं, वो सब अति प्रसन्न हो गए किनको इस प्रकार श्री Bhaktisiddhanta Thakur ने Mr. Day यानी अभय चरण को स्वीकार करते हुए। Mr. Day as a good listener, some of them wondered when or where Bhaktisiddhanta Thakur had arrived at such estimation of the young farmist. तो सब लोगों को आश्चर्य हो गया, अरे खाली दीक्षा के पहले Bhaktisiddhanta Thakur के साथ बहुत दो या तीन बार उनका मुलाकात हुआ, बाकी सब लोगों को आश्चर्यचकित हो गए कि Bhaktisiddhanta Thakur में मिस्टर डे को अभिचरण को इतना अच्छी तरह कैसे जानते हैं। ये कब हुआ उनको मालूम नहीं था कि सब लोग तो शेष साई मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, इधर जो है गुरु शिष्य के बीच में संबंध जो है गाढ़ से जुड़ गया। बाद में एट द इनिशिएशन Bhaktisiddhanta Thakur वाज सीटेड ऑन ए व्यासासन, व्यासासन पर बैठे थे। And the room was filled with guests and members of the Gaudiya Math. Gaudiya Math ke sadasyon ke dwara aur adityon ke dwara bhara hua tha. Those to be initiated sat around a small mound of earth where one of Bhaktisiddhanta Thakur sannyasi prepared a fire and offered grains and fruits into the flame while everyone chanted the mantras for purification. Abhay's sister and brother were present but not his wife. To diksha ka samaroh shuru hua. जितने भी दीक्षा लेने वाले सब यज्ञ कुंड के आजू बाजू में बैठे हैं और उनके Bhaktisiddhanta Thakur एक सन्यासी शिष्य जो है सात मंत्रों का उच्चारण करते यज्ञ का हवन विधि शुरू किए और इस सभा में श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण के उनकी बहन जो पिशी माँ कहा जाता है उनके बारे में बहुत सारा लीलाएं हैं, बहुत उनके प्रति श्रील प्रभुपाद जी उनके हाथों के बना हुआ प्रसाद ग्रहण करते थे और उनके भाई भी उपस्थित थे, लेकिन उस दीक्षा समारोह में उनकी पत्नी उपस्थित नहीं थी। Wife was not there. Abhay masked in the presence of his Gurudev. Yes, he likes to hear the words of his spiritual master, and his glance of recognition had reminded with Abhay had remained with Abhay. Abhay would continue pleasing his spiritual master by hearing well. तुमने सोचा? प्रभुपाद ने सोचा कि मैं अपने अपने गुरु को और प्रसन्न करूंगा। कैसे प्रसन्न करूंगा? और ध्यान पूर्वक श्रवण करके प्रसन्न करूंगा। Then he thought, I will be able to speak well. हाँ, बता, अगर मैं ध्यान से सुनूंगा तो मैं और अच्छी तरह से बोल भी सकता हूँ। The Vedic literature described 9 processes of devotional service, the first of which was श्रवणम। सबसे पहला कि भक्ति का अंग क्या है? श्रवण, hearing about Krishna. Then came कीर्तन। ये सब दीक्षा का समारोह हो रहा है, प्रभुपाद जी के मन में ये सब गूंज रहा है। ओ अच्छा, मैं जब कोशी में बैठा था और प्रवचन चल रहा था उस समय मैं बैठा था, तब मेरे गुरु ने मुझे देख के इस प्रकार स्वीकार किया होगा। श्रील Bhaktisiddhanta Thakur had not praised him for donating money. देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्रील Bhaktisiddhanta Thakur ने ये नहीं कहा कि अभय चरण जो है ये बहुत अच्छा भक्त है, क्यों मालूम है, बहुत अच्छा दान देता है, इसने गुणगान नहीं किया। मनी टू द मट एंड एडवाइज्ड हिम टू फोरसेक हिज फैमिली एंड बिजनेस ट्रैवल विद हिम। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप अपना व्यापार त्याग करो, अपनी अपना जो परिवार को त्याग करो, और ना उनका अभयचरण को ने कहा कि आप बड़ा तपस्या करो, कुछ नहीं कहा। ने कहा बस कि आप क्या करो, ध्यान से सुनो। ही लाइक्स टू हियर, ही हैड सेड आई हैव मार्क्ड हिम, अभय थॉट अबाउट इट एंड अगेन लिसन केयरफुली as a spiritual master conducted the initiation. तो इनके मन में बार बार श्रील बक्सीनाथ ठाकुर के इन बातों बात जो है मन में गूंज रहे थे. फाइनली बक्सीनाथ ठाकुर कॉल्ड अभय टू कम फॉरवर्ड, अभय चरण को आगे बुलाए एंड रिसीव्ड द हरिनाम इनिशिएशन बाय एक्सेप्टिंग द बीट्स. अभय चरण रिसीव्ड हरिनाम इनिशिएशन, हरिनाम दीक्षा को ग्रहण किए, उनके हाथों से जपमाला ग्रहण किए. After offering prostrate obeisances, Abhay extended his right hand and accepted strands of japa beads from the hands of his spiritual master. जैसे अभय चरण प्रणाम किए, प्रणाम करके उनके right hand, actually असलत में दोनों हाथों से लेना चाहिए. Right hand अगर आगे लेना पड़ता है तो दोनों हाथ को ऐसे नहीं कर सकते हो, तो क्या करना चाहिए, एक हाथ को ऐसे रखना चाहिए. क्योंकि जो भी बहुत अमूल्य वस्तु को प्राप्त करते हो अगर एक हाथ से लेंगे तो फिसल जाएगा, जिससे बहुत ध्यान पूर्वक लेना चाहिए, दोनों हाथों से लेना चाहिए कोई भी आध्यात्मिक वस्तु को. जैसे आप चरणामृत भी ग्रहण करते हैं ऐसा नहीं कि चरणामृत दो लेके, ऐसा नहीं, केयरफुली नहीं, दोनों हाथों को रखना चाहिए ताकि वो बहुत संभाल के, बहुत पवित्र वस्तु है. तो अभय चरण एक्सटेंडेड हिज हैंड, सेम टाइम ऑल्सो रिसीव्ड एक्सेप्टेड द स्टैंड्स जप बीड्स फ्रॉम हिज हैंड स्पिरिचुअल मास्टर. एट द सेम टाइम उसी समय ही ऑल्सो रिसीव्ड द सेक्रेट ब्राह्मणिकल थ्रेड. उसी समय अभय चरण को ब्राह्मण दीक्षा भी प्राप्त हुआ, सिग्निफाइंग इन सेकेंड इनिशिएशन. यूजुअली श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर गेव फर्स्ट इनिशिएशन हरिनाम एंड ओनली आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वाज सैटिस्फाइड द प्रोग्रेस ऑफ द डिसाइपल वुड ही गिव द सेकेंड इनिशिएशन. भक्तिसिद्धांत ठाकुर इनका ऐसा आदत था कि पहले हरिनाम दीक्षा देते थे और उसके बाद जब पूर्ण तरीके से उस शिष्य से बहुत संतुष्ट होने के बाद कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण दीक्षा देते थे. लेकिन अभय चरण को उन्होंने दोनों साथ साथ में, पहला दीक्षा हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों साथ साथ में दे दिए. बट ही ऑफर्ड अवॉइड बोथ इनिशिएशन एट द सेम टाइम. नाउ अभय वाज फुल फ्लेश डिसाइपल, ए ब्राह्मण हु कुड परफॉर्म सैक्रिफाइस सच एज फायर अग्नि फॉर इनिशिएशन. ही वुड वर्शिप द डेटी इन द टेम्पल एंड वुड एक्सपेक्ट टू डिस्कोर्स वाइडली. श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर अवॉर्डेड added Aravinda lotus to his name. Now Abhay Charan is known as Abhay Charanaravinda Das. Unka naam kya pada? Abhay Charanaravinda Das. After Shri Bhaktisiddhanta Thakur left Allahabad for Calcutta, Abhay keenly felt the responsibility of working on behalf of the spiritual master. To jaise unke Bhaktisiddhanta Thakur diksha deke वो कलकत्ता की ओर चले गए अलाहाबाद में, अभय चरणारविंद दास प्रभुपाद जी, तो उनके हृदय में एक ऐसी भाव प्रकट हुई. क्या प्रकट हुई? मैं अपनी गुरु की ओर से उनकी प्रतिनिधि के रूप में मुझे कार्य करना है, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना है. यही है दीक्षा ले समारोह का मूलभूत परिवर्तन. पहले जो है जो भक्ति है वो किया जाता है, वो भी भक्ति है, लेकिन उसमें कमिटमेंट नहीं रहता है. कमिटमेंट का अर्थ है बंधन नहीं रहता है, जिम्मेदारी नहीं रहता है. लेकिन दीक्षा लेने के बाद जिम्मेदारी आ जाता है. तो क्या है वो जिम्मेदारी, वो किस प्रकार दीक्षा का विधि किया जाता है और उस दिन हमको क्या प्राप्त होता है, वो सारी बातें ये श्लोक के अंदर है, उसको हम चर्चा करेंगे. तभी हमने प्रभुपाद लीलामृत में किस प्रकार श्री प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर से दीक्षा ग्रहण किए उसके बारे में चर्चा किए. तो सबसे पहला पंच संस्कार, ये जो हम चर्चा करने वाले हैं आज का जो विषय, ये पंच संस्कार का ये श्लोक, ये चर्चा आधारित है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया एक लेख. श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सज्जन तोषणी करके एक लेख लेखों को लिख के सज्जन तोषणी नामक ग्रंथ में प्रकाशित करते थे. तो ये सज्जन तोषणी नामक जो ग्रंथ है वो 1885 यानी 1885 में लिखा गया है. यानी कितने साल हो गए, करीबन 125 साल पहले लिखा गया एक लेख है. तो उस लेख का, लेख तो बंगाली में लिखे गए, उसका अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में. उसको पढ़ के मेरे जो अवगत हुआ है, जो ज्ञान, उसको प्रदान करने के लिए प्रयास करेंगे. तो ये अति महत्वपूर्ण है. सबसे पहला शिल भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को कहते हैं कि द शास्त्रस एक्सप्लेन दैट ए पर्सन हु रिसीव्स पंच संस्कार कैन प्रैक्टिस टू काइंड्स ऑफ डिवोशन एंड गेन परमानेंट हैप्पीनेस इन द एटर्नल अबोड ऑफ हरि। तो सबसे पहली बात यह है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, पंच संस्कार के दीक्षा के बिना दो प्रकार का जो भक्ति है, एक है विधि और राग, ये दोनों प्रकार के भक्ति को वो कर सकता है और सीधा इस जन्म में इस भक्ति को करते करते जैसे अंत होता है वो सीधा भगवत धाम में जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर साधना भक्ति को सही तरीके से शुरू करना है ये पंच संस्कार की दीक्षा की आवश्यकता है, उसके बिना ये भाव और प्रेम के लक्षण प्रकट नहीं हो सकते। क्यों कि कृष्ण को हमेशा शंका रहता है ये दीक्षा नहीं लिया तो कभी भी जा सकता है। जैसे उस जो स्त्री है वो भले ही वो पुरुष उसको बहुत प्रेम करता है, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक उनको शंका रहता है छोड़ के तो नहीं जाएगा। उसी प्रकार का शंका भगवान के पास रहती है, कहीं ये तो अभी दंपतन में नहीं आया, नहीं तो जा सकता है। तो इस प्रकार की शंका जब तक कृष्ण में रहती है तब तक कृष्ण स्वीकार करते हैं लेकिन पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं करते। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करते पूर्ण तरीके से शरणागत हो जाता है, सही काल है उस समय कृष्ण आत्मसमान अपना ही समान मान लेते, अपना पूर्ण तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। तो एक होता है भक्ति, तो अनेकों सब लोग करते हैं, इसमें क्या रहता है समय मिला को करेंगे, टाइम मिलेगा तो पाऊंगा, टाइम मिलेगा तो जब करूंगा। लेकिन साधना भक्ति के अंतर्गत क्या है, दीक्षा लेने के बाद टाइम निकाल के इसको करूंगा। ये दोनों भक्ति हैं, लेकिन पहले की क्या है समय मिलागा तो आऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति को आपने बुलाया कि उन्होंने कहा कि टाइम मिलेगा तो आऊंगा, तो आपके हृदय में कैसे लगेगा, यानी मेरी बातों को महत्व नहीं दे रहा है। उसने ना नहीं बोला लेकिन उन्होंने बोला करूंगा, लेकिन समय मिलागा तो कंडीशन क्लॉज है। लेकिन अगर आपने किसी को अपने घर में बुलाया तो ने कहा मैं जरूर ये टाइम में आऊंगा, चाहे कुछ भी हो आऊंगा, ये बात सुन के आपके दिल में कैसे लगता है, वाह मेरा बात को उन्होंने वैल्यू रखा है। तो भले ही कोई व्यक्ति आपको नकारता नहीं है लेकिन प्रायोरिटी नहीं देता है तो हमारे हमको बहुत दुख लगता है। वैसे ही कृष्ण के अनेकों भक्त है, जो भी कृष्ण का नाम एक बार भी उच्चारण करता है कृष्ण को स्वीकार करते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते है। जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक वो कृष्ण उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, अरे ये तो गड़बड़ कर सकते कभी भी, है मेरे भक्त है लेकिन हमेशा डर रहता है, चिंता रहता है, अरे आएगा कि नहीं, मेरे पास रहेगा कि नहीं, ये जब करेगा कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करते हैं तुरंत कृष्ण जो है वो शांत हो जाए, अच्छा ठीक ये करने वाले इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूं, आई कैन ट्रस्ट हिम। ये कृष्ण और गुरु का वैष्णव का भरोसा को स्वीकार करने के लिए ये व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो दीक्षा के अंतर्गत क्या रहता है, ये पांच चीजें रहता है। पांच चीजें क्या हैं वो हम फिर और एक बार लाइन में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में आप देखिए सबसे पहला है ताप, ताप ये पहला वस्तु है। दूसरा है पुंड्रम, तीसरा है नाम, चौथा है मंत्र, पांचवा है याग, और ये पहले दूसरे लाइन के आखिरी में क्या लिखा है पंचमहा। पंचमहा करके ये पांच चीजें हैं। ये पांच चीजें इसको स्वीकार करने की जो विधि है उसको क्या कहा जाता है, अमी ही पंच संस्कार, इसको पंच संस्कार कहा जाता है। आप में से जिन लोगों को दीक्षा हो चुके या पहले की दीक्षाओं के समारोह देख चुके हैं आप सबको और अच्छी तरीके से इस बात को और समझ सकते हैं। उस दिन दीक्षा जिस दिन दिया जाता है या लिया जाता है उस दिन ये पांच चीजें हमको प्राप्त होता है, इसको पंच संस्कार कहा जाता है, जिसके द्वारा परमेकांत की हेतवः, और ये पांच चीजों के द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, ये किसके लिए हेतु है, सब चीजें परमेकांत की। जिस बात को कहा जाता है भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धिर एके है कुरुंदना व्यवसायत्मिका बुद्धिर समाधोन विधीयते। इस प्रकार एकांत की हरेर भक्ति, हरे का भक्ति भगवान के प्रति भक्ति जो है अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए ये सब हेतु है, पांच चीजें हेतु है। तो सबसे पहला चर्चा करते हैं कि ये ताप क्या होता है, व्हाट इज दिस ताप। ताप का अर्थ है गर्मी, हीट। जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो ये गर्मी हमको बहुत दुख देता है कि नहीं, बहुत तकलीफ होता है, इट गिव्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी ये ताप का अर्थ है उस दिन या उस शिष्य वो समझ लेता है या स्वीकार कर लेता है ये भौतिक जगत जो है एक बड़ा दुखालय है, एक बहुत बड़ा कड़ाई है ये भौतिक जगत, जिसके अंदर इतने सालों से, इतने जन्मों से, कितना जाने कितने जन्मों से मैं तले जा रहा हूं, मैं दुखों को अनुभव कर रहा हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, इन सब ऐसे दुखों को मैं भोगता जा रहा हूं, इसलिए मुझे अभी इन दुखों को नहीं भोगना है, मुझे इस भौतिक जगत से निकल जाना है। इस अनुभूति को ताप कहा जाता है और ये ताप का अनुभूति जिसको प्राप्त हुआ है उसको कंठीमाला दिया जाता है। पता नहीं आप जिन लोगों को दीक्षा प्राप्त हुआ है या दीक्षा का समारोह देखे हैं, उस दिन आपको एक नया कंठीमाला दिया जाता है। ये ताप जो है वो कंठीमाला को सूचित करता है। कंठीमाला का अर्थ क्या है, वो पहली बार जब मैं इस्कॉन में गया था तो मायापुर में मुझे मालूम है, तो एकदम पहली बार था तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तो मैंने ऐसे पूछा एक भक्त से, ये क्या पहनते हो, क्या है। तो वो भक्त तो मैं अच्छा सा पहचान है, उनको हमको शिक्षा भी दे देते। उनके साथ में और एक भक्त है, बड़ा सीनियर भक्त थे, वेरी सीनियर, तो वो बंगाली में ज्यादा उनका बात करना था, तो उनको मालूम पड़ा कि मैंने प्रश्न पूछा कि कंठीमाला क्या, उनको बड़ा उत्साह आया है। उत्साह से उन्होंने कहा कि जानते हो कंठीमाला क्या है, माला क्या है। हा? वो बंगला में बोल रहे थे, मुझे थोड़ा उस समय बंगला समझ में आ रहा था, तो उन्होंने कहा ये कंठीमाला का अर्थ है ओ तुम्हें कृष्ण और कुकुर। तो कंठीमाला का अर्थ है तुम कृष्ण का कुत्ता बन गया है। अब देखिये पहली बार कोई इस्कॉन में गया और पूछेगा ऐसा प्रश्न कि कंठी वाला क्या है और उसका जवाब भी क्या मिला, देखिए मैं तो डर गया, कुत्ता बन रहा है। तो मैं फेस पे कोई रिएक्शन नहीं देखा, मैं मन में मैंने सोचने लगा क्या इधर कुत्ता, मैं कभी नहीं पहनूंगा इसको। तो हर एक वक्त अपना अपना रियलाइजेशन होता है, नहीं जो बात का ऐसा नहीं कि गलत है, सही बात का, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली जानना चाहिए व्हाट इज दिस, इसका अर्थ क्या है वो जानना जरूरी है। क्यों उनके अनुसार ये बात है कि अभी आप जो है माया का कुत्ता रहा आज तक, जैसे और सोचे बंद कर देगा अभी और उसका व्याख्या करने लगा, व्याख्या करना, तुम जानते हो कि दो प्रकार का कुत्ता होता है, क्या बता रहे हो मुझे कुत्ता, मैंने कंठीमाला के बारे में पूछा कुत्ते के बारे में बता रहे हो। तूने कहा एक प्रकार का कुत्ता होता है जिसका बेल्ट नहीं होता है और दूसरा प्रकार का कुत्ता होता है वो बेल्ट होता है, तो तूने कहा वाह क्या क्लासिफिकेशन है, जो जूलॉजी वाले भी हैरान हो जाएंगे, बेल्ट वाला कुत्ता बगैर बेल्ट वाला कुत्ता। तो बाद में मैंने कहा ऐसे बस मैं सोचा तो अभी अभी चलते अभी बहुत हो गया, तूने कहा रुको रुको पकड़ पकड़ के समझा रहा है। मैंने कहा तुम जानते हो एक गाड़ी आता है म्युनिसिपैलिटी का कुत्तों को पकड़ के लेके जाता है, कितना तक कुत्तों को, आई केम टू हियर अबाउट गॉड नॉट अबाउट डॉग। व्याख्या, जब वो म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी आता है कुत्तों को पकड़ने के लिए, जिसका बेल्ट है उसको पकड़ता नहीं है, जिसका बेल्ट नहीं है उसको पकड़ते हैं और सीधा लेके जाते हैं, और पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, लेके जाते हैं और उसको क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल चीज में डाल के जला के मार डालते हैं। तो मैं बोला वाह ये सब क्यों बता रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बाद में धीरे धीरे से जो मेरे शिक्षा दे रहे थे मेरा हाथ पकड़ किसके लेके देखे गए, उनको समझ में आ रहा था नया नया लड़का है उसको क्या सुना रहा है। तो मैंने पूछा कि ये कुत्ते के बारे में, फिर वापस पूरा मंदिर में जाके पूछा ये क्या बोल रहा था कुत्ता। तब उन्होंने समझाया मुझे, उनका कहने की बात यह है, क्योंकि मुझे उसका व्याख्या नहीं सुना, म्युनिसिपैलिटी गाड़ी क्या है वो सब सुना नहीं, तो ने कहा कि ये एक्चुअली ऐसा है, कंठी माला धारण करने से हम गुरु का शरणागति लिए हैं, हम कृष्ण के हो गए हैं, और कृष्ण के होने के द्वारा ये जो माया नामक म्युनिसिपैलिटी का जो गाड़ी है वो पकड़ के नहीं जाता है। जैसे पता नहीं आपको ये बात मालूम है, लेकिन छोटे शहरों में ऐसा होता है कि कुत्तों की वजह से बहुत सारा डिसीज आता है, जो पागल कुत्ता होता है और बहुत सारी बीमारियां फैलता है। इसलिए क्या करते हैं, जो जिसका बेल्ट नहीं है, जिसका बेल्ट है इस कार्य उसका मालिक है, जिसका बेल्ट है उस कार्य मालिक है, तो जिसका बेल्ट नहीं है इसका कोई मालिक नहीं है, उसको देखभाल करने वाला नहीं, कुछ ना कुछ बीमारी है उसको पकड़ के लेके जाएंगे। तो वैसे ही वो ये जो कंटीमाला करते हैं, ये सूचित करना कि मैं भाई बस संसार से तंग आ चुका हूं, आई एम कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, मैं भौतिक जगत का कुछ आशा नहीं करता हूं, इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, उसके अंदर से कोई रस निकालने के प्रयास करते करते मैं थक गया हूं। इस प्रकार की जो मनोभावना जिसके अंदर है उस व्यक्ति को ताप कंटीमाला दिया जाता है। अभी गुरु उस दिन कहते हैं कि अभी तुम समझ गए हो वास्तविक भौतिक जगत का क्या स्थिति है, जैसे अर्जुन की स्थिति है। भगवद गीता का प्रारंभ में उन्हें कहा कि अनेक बातों को कहा, हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों मालूम है, क्योंकि अगर युद्ध करूंगा तो स्वजनों को मारना पड़ता है, मैं नहीं करूंगा, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, अरे युद्ध करेंगे तो पाप लगता है, अनेक बातों को उन्होंने कहा। अंत में ये सब कहने के बाद उन्हें कहा, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान निश्चितम रूहितन में शिष्यस्तेहम शादिमान त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोष ये ताप उसको सूचित करता है, मैं कृपणता के द्वारा दुर्बल हो चुका हूं, मैं मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं बहुत ही दीन हो चुका हूं, मैं थक गया हूं, तंग आ गया हूं इस भौतिक जगत के साथ। ये जो मनोभावना जिसके पास है, इस प्रकार का वैराग्य की भावना है, अर्जुन बाद में कहते हैं वापन भूमनो असबद्ध रुद्धम राज्यम सुराणाम अपिचारी बध्यम, मुझे राज्यम सुराणाम इंद्र का पदवी मिल जाए मैं बस वापस नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि इंद्र का पदवी में भी दुख है, कहीं भी जाओ इस भौतिक जगत में केवल दुख ही है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का अनुभव हुआ है जगत दुखाल और अशाश्वत है, इसके अंदर कोई रस नहीं है, वो योग्य है इस खंटी माला धारण करना, ताप इसको अनुभव करना। तो ये पहला चीज है। सनातन गोस्वामी पास श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो वो सीधा उन्होंने कहा, पहला प्रश्न ने पूछा आमी की मैं कौन हूं, केम ने जाले तापत्रय, मैं ये तापत्रयों को क्यों भोग रहा हूं, इस संसार में केवल दुख ही दुख है, इस बात का उन्होंने इस अनुभव को प्रस्तुत किया। ये ताप के अंतर्गत संसार के प्रति जो विरक्ति है, दीनता है, ये दो भावनाओं को प्रकट किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में जो शिष्य जो दीक्षा ले रहे हैं या लिए हैं, उनका सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हृदय में वैराग्य और दूसरा दीनता की भावना, दैन्य, आपके अलावा है गुरुदेव मेरा और कोई चारा नहीं है, आप अगर मुझे नकारेंगे मैं कहां जाऊं, मैं सारा संसार के प्रति विरक्ति आ चुका है, भले ही मैं इधर उधर रहता हूं, घर में इधर उधर रहता हूं, लेकिन किसी के साथ मन नहीं लगता है, अभी मैं तंग आ चुका हूं इन लोगों के साथ, अभी मैं आपके पास आया हूं, अभी आप मुझे नकारो मत, डोंट रिजेक्ट मी, अगर आप मुझे नकारेंगे तो मैं कहां जाऊं, ना घर का रहा ना घाट का रहा, वैसा परिस्थिति हो जाएगा। जब इस प्रकार की हृदय में भावना है, गुरुदेव इस भावना को देख के अति प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होके हंसते हुए आपको कंटीमाला देते हैं। अस्तित्व में दीक्षा के दिन ये कंटीमाला देने की जो क्रिया है इस प्रकार है। और आप बोल रहे हो कृष्ण क्यों हंस, गुरु क्यों हंसते हैं, क्यों हंस रहे उस दिन इस भावना को देख के, अच्छा बेटा अभी समझ गया ना, इतने सालों से कहता गया लेकिन समझा नहीं, आज समझ गया, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अनेक वो लोग बहुत सालों से श्रवण करते आते हैं संसार दुखकाल अशाश्वत है, फिर भी वापस उसी में जाएंगे। जैसे एक सुअर होता है, वो क्या करता है, उसको कितना भी रसगुल्ला दो, उसको बोलता है नहीं 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 गटर में कुछ है, मैं ढूंढ के आऊंगा, चक्र में कुछ है, ढूंढ के आऊंगा, ढूंढने के लिए जाता है लेकिन कुछ मिलता नहीं, वापस आता है। यानी उस दिन हमारा भी वैसी स्थिति है। कितने साल से हम मंदिर में आना शुरू किया, कितने साल से हम भक्ति से जुड़े हैं और बार बार सुनते आ रहे हैं कि यह भौतिक जगत दुखाल और अशाश्वत है, लेकिन फिर भी हम बाहर जाएंगे उसी गटर में उस सुअर जैसा और ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे, बोल के जाएंगे मैं थोड़ा सा ढूंढ के आता हूं। तो एक बार ऐसा हुआ, श्री भक्ति चारू महाराज इधर क्लास दे रहे थे इसी जगह, तो उन्होंने एक प्रसंग बताया था। उनका एक शिष्य है, उनका वैसे उनकी माता पिता अच्छे भक्त है, तो उन्होंने कहा कि अपने जो पुत्र को भक्ति चारू महाराज को दे दिए थे कि आप उनको संभालिए। 8 साल का उम्र से उनको दे दिए थे और जहां भी महाराज जाते उनको साथ में लेके जाते थे। अभी उनका 16-17 साल हुआ तो एक दिन वो लड़का आके बताता है महाराज को, महाराज अभी क्या है, मैं 8 साल की उम्र से आपके साथ में हूं, अभी क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा दुनिया देख के आना चाहिए, मैं तो दुनिया देखा नहीं, तो थोड़ा दुनिया का अनुभव हो जाएगा ना तब मैं भक्ति में अच्छा सा रहूंगा। तो भक्ति चारू महाराज ने कहा वेरी गुड, तुम जाओ, तुम जाके ढूंढ के आओ, तुमको जो सुख चाहिए जहां चाहे ढूंढो, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है और मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तो ऐसी स्थिति है गुरु का, वो हमेशा हर शिष्य का हर एक भक्त का इंतजार करते हैं, ये कब आएगा मेरे पास, ये ढूंढ ढूंढ के भौतिक जगत में सुख के लिए ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जब आएगा, जब आके कहेगा प्रभु जी मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं, हो वेरी गुड, अरे हृदय में दया नहीं है? अगर कोई आपके पास बहुत दुखी होके आता है और उसको बोलेगो अच्छा बेटा वेरी गुड, और कहोगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, कितना कठोर व्यक्ति है बेचारा, वो रो रहा है और ये हंस रहा है। और भगवत गीता में भी ऐसे हुआ, अर्जुन रो रहा था लेकिन भगवान ने क्या, प्रहसन्न भारत, वो हंसते हंसते अर्जुन को कह रहे, हंसना ही नहीं, हंसते हंसते कहते असोच्यानुसोचस्तम प्रज्ञावादाम से नानुसोचंति पंडिता, हे अर्जुन तुम मूर्ख हो, अभी बेचारा ऑलरेडी दुखी है उसके ऊपर आप हंस रहे हो और उसके ऊपर आप ये कहते हो कि तुम मूर्ख हो, क्या कैसे गुरु है देखो। तो ये है तापा, ये उस दिन जो होता है कंटीमाला, सबसे पहला इस कंटीमाला को चेंज करने के लिए कहा जाता है, वो परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है, ये क्या है, ये ताप है। उस दिन जो दीक्षा के दिन गुरु के पीछे इस प्रकार की भाव है, क्या भाव है, उनके हृदय में एक बहुत सुंदर सा हंसी है, जिस प्रकार कृष्ण के मुख में हंसी है उसी प्रकार का हंसी गुरु के मुख में है। क्या विचार है, अच्छा बेटा मैं बहुत प्रयास किया तुमको समझाने के लिए, आज समझ गया, थैंक यू वेरी मच। ही बिकम्स हैप्पी व्हेन ही सीज दैट यू रियलाइज दैट यू आर सफरिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं दुखी हूं। आध्यात्मिक ज्ञान का शुरुआत होता है इस जानकारी के साथ, मैं दुखी हूं। लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाइए, पहले आपका लीला समझो, आप दुखी हो उसके बाद राधा कृष्ण की लीलाएं, यू आर सफरिंग, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया उस व्यक्ति को ताप, वो एक चाबी है दीक्षा का, जो समारोह में एंटर होना है, प्रवेश करना है, जैसे कमरे में प्रवेश करना है तो दरवाजा का चाबी खोल के अंदर जाना होगा, वही दीक्षा के समारोह में प्रवेश करने के लिए चाबी क्या है, ताप। इस प्रकार की रियलाइजेशन, वैराग्य, अत्यंत वैराग्य, फ्रस्ट्रेशन भौतिक जगत में मैं मुड़ के नहीं देखूंगा, जिस प्रकार भरत महाराज ने क्या किया, मलवत त्याग किया। ये भौतिक जगत एक बड़ा सा मल है और एक बड़ा सा टॉयलेट है, शौचालय है, एक बार शौच कर दिया फिर वापस मैंने क्या किया उसके बारे में विचार नहीं करना, फिर वापस नहीं देखना है। इस मनोभाव के साथ वो आता है गुरु के शरण लेने के लिए और गुरु हंसते हंसते प्रसन्न चित्त होते हुए अस्तित्व में जिस दिन दीक्षा प्रदान करते हैं, अस्तित्व में शिष्य को महान काबिलियता प्राप्त हो रहा है, महान चीज प्राप्त हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गुरु अति प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं अपने गुरु की संतुष्टि के लिए मैंने क्या किया है, इस भक्त को एक भक्त बनाया है, एक गुरु परंपरा से जुड़ा है। जिस दिन दीक्षा प्राप्त होता है, सच में बताऊं, जो शिष्य जिस प्रकार आनंद को अनुभव करते हैं उससे हजारों गुना आनंद गुरु प्रसन्न अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि गुरु परंपरा के साथ मेरे गुरु की सेवा के लिए मैं और एक व्यक्ति को जोड़ा है। गुरु बिकम्स वेरी हैप्पी ऑन दैट डे। तो ये ताप उस दिन कंटी माला। बाद में तपस्या तो करने वाले बहुत हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग तो बहुत हैं। कभी कभी लोग आते हैं बहुत दुखी होकर आते हैं, लेकिन हर प्रकार के दुखी व्यक्ति को गुरु स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर और एक चीज को देखते हैं। क्या ये दुखी होकर मेरे पास आया किसके लिए आया है? भौतिक समाधान के लिए आया है, आध्यात्मिक समाधान के लिए आया है? अगर भौतिक समाधान के लिए आए हैं तो उनको नकार देते हैं, जाओ थोड़ा बहुत कुछ करके भेज देते हैं, दीक्षा नहीं देते हैं। और लोग सोचते हैं ये मेरे गुरु का कृपा है। कुछ लोग बहुत अस्तित्व बहुत ही ज्यादा दुखमय है, फ्रस्ट्रेट होकर कुछ लोग आते हैं, ओ महाराज ऐसा दुख है, ये है, अभी थोड़ा सा क्या है, हमको धन की आवश्यकता है, आप जरा हमको 10-15 हजार रुपए दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार एक वैरागी के पास आते हैं, कुछ भौतिक समस्याओं का भौतिक समाधान के लिए आते हैं। तो उस व्यक्ति के ऊपर गुरु प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जिस चीज के वजह से वो दुखी है उसी को प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास आना यह तो मूर्खता है, इट इज फुलिशनेस। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और उसके पास आता है, गुरु के पास आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं और जो मेरा दुख का कारण है उसको आप दीजिए और दीजिए। ये भौतिक चीज कोई भी है, हर एक चीज केवल दुख का कारण है, और हम दुखी हैं केवल इसी के वजह से क्योंकि हमारा भौतिक आसक्ति है। और हम अरे ये मूर्खता है ये सोचना कि मेरी भौतिक समस्याएं का समाधान भौतिक चीजों की प्राप्ति में है। तो इसलिए दूसरा चीज क्या है? पुंड्र। पुंड्र का अर्थ है तिलक, उसको ऊर्ध्व पुंड्र कहा जाता है। टेक्निकली हम बोलते हैं तिलक, तिलक लगा के आओ, ये तो साधारण सी भाषा है, लेकिन ये टेक्निकल भाषा में, दार्शनिक भाषा में इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व पुंड्र कहता है। ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर की ओर जाने वाले पुंड्र। जो दुखी होकर आया है तो किसके लिए आया है? कृष्ण की प्राप्ति के लिए आया है, कृष्ण भावना की प्राप्ति के लिए आया है। क्या वो भी गुरु उस दिन देखते हैं? और जिसके पास ये भावना है मैं केवल भौतिक चीजों से ही तंग नहीं आ चुका हूं, भौतिक समस्याओं का समाधान के द्वारा भी तंग आ चुका हूं, ये बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त जिस दिन दीक्षा ले रहा है तो उनकी मनोभावना केवल वैराग्य नहीं है, केवल दीनता ही नहीं है, साथ साथ में वो भौतिक समाधान जो होता है, समस्याओं का समाधान होता है, उसके ऊपर भी विश्वास नहीं रहा भी। There is no hope even on the material solutions. Prabhupada ji likhte material solution, material problems, spiritual solutions. तो वो समझ गए केवल कृष्ण की प्राप्ति में ही मेरा हित है, उसके अलावा और कोई मेरे लिए उद्देश्य नहीं है, मेरा जीवन का गंतव्य है कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। इस प्रकार का जो विचार जिसके अंदर है उसको तिलक दिया जाता है। वैसे तो 12 तिलक है, केशवाय नारायण 12 जगह लगाया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो जो है माथे के ऊपर लगाने वाला तिलक है उसको ऊर्ध्व पुंड्र कहा जाता है। हाँ, ऊर्ध्व पुंड्र का अर्थ है कि ये समझना कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना, मुझे आध्यात्मिक जगत में जाना है, मुझे नीचे की ओर नहीं जाना, फिर वापस मुड़ के नहीं देखना इस भौतिक जगत में। आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर एनी मेटीरियल सोल्यूशंस, आई वॉन्ट ओनली स्पिरिचुअल सोल्यूशंस। इस प्रकार की जो भावना जिसके पास है उस दिन गुरु क्या प्रदान करते हैं? दीक्षा के दिन ऊर्ध्व पुंड्र प्रदान करते हैं, ही गिव्स यू तिलक। तो अनेकों लोग तपस्या करते हैं, अनेकों लोग दुखी हैं, उनमें से केवल कुछ ही लोग कृष्ण की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हैं। उस व्यक्ति को ऊर्ध्व के बाद अभी आप तीसरी बात क्या है, तीसरी चीज क्या प्रदान किया जाता है? नाम। तथा का अर्थ है नेक्स्ट, उसके बाद नाम दिया जाता है। तथा यह शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है दास नाम, इसको और टेक्निकली दास नाम कहा जाता है। ये नाम दास नाम जैसे होता है ना, लोग जो है दीक्षा के दिन एक भक्त, बहुत साल पहले की बात है, प्रभु जी मेरा दीक्षा हो रहा है, बोला क्या वाह वेरी गुड थैंक यू, किस बात के लिए इतना खुशी हो? प्रभु जी कल से मेरा नाम चेंज हो जाएगा। तो अच्छी बात है नाम चेंज हो जाए, लेकिन समझो कि ये क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नेम, और गुरु आपको क्यों दे रहे हैं दास नाम, व्हाई इज ही गिविंग, ऐसे शौक से दे रहे हैं जैसे माता पिता बच्चों को नाम देते, हमारे बच्चे क्या नाम रखे, दोस्तों से पूछेंगे, इंटरनेट से लिस्ट निकालेंगे, ये अच्छा है, इसका साउंड अच्छा है, इसका साउंड अच्छा है, नहीं नहीं ये बहुत लंबा है चौड़ा, बहुत चर्चा होता है, ये मनोभावना से नाम नहीं दिया जाता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को टिंगू पोंगू नाम रखते हैं, उस प्रकार का नहीं है, ये जो नाम है हमारी वास्तविक नाम है, जो पहले जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है, वो नकली नाम है, किसी की मनोइच्छा को पूर्ण करने के लिए वो नाम दिखा गया था, और कभी कभी परिवारों में झगड़ा भी हो जाता है किसका क्या नाम रखे। तो एक लॉयर मुझे कह रहा था कि एक पति पत्नी जो है डाइवोर्स तक लेने के लिए आ गए, क्यों आए, क्योंकि झगड़ा कहां से शुरू हुआ, हमारे बच्चा क्या नाम रखेंगे, पति एक बोलता है पत्नी एक बोलती, इतना झगड़ा करने बैठे थे। तो लेकिन उस प्रकार की नाम नहीं है, ये दास नाम है, और गुरु आपको उस दिन दास नाम क्यों दे रहे हैं, अति प्रसन्न होके दे रहे हैं, कौन सी चीज को देख के प्रसन्न हुए, आपके अंदर ये ताप पुंड्र, एक प्रकार की दुनिया से वैराग्य और विरक्ति, और साथ साथ में दीनता, जैसे सनातन गोस्वामी पाद दीनता को व्यक्त किया, कैसे व्यक्त किया कि अमी नीच जाति नीच संगी कुविषय को पूरी जन्म गुआ जन्म मार, सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं नीच जाति का नीच संगी, मेरे भले बड़े विद्वान थे, 13 भाषाओं में प्रवीण थे, और इतना ही नहीं भागवतम के 18,500 श्लोक उनको कंठस्थ थे, लेकिन सनातन गोस्वामी व चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्या कहते हैं, नीच जाति का हूं नीच संगी और कुविषय को विषयों के सागर में गिर पड़ा हुआ हूं, लेकिन अभी सनातन गोस्वामी पुरश्चर्य करके आ रहे हैं और बहुत तपस्या करके ब्राह्मणों के प्रसंग में केवल भागवत का श्रवण करते हुए पूरा एक महीना उन्होंने ऐसा बिताया, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे हैं, लेकिन वही सनातन गोस्वामी कहते विषयों के सागर में डूब के मर रहा था मैं, अभी आप मुझे उद्धार करो, इसको दीनता कहा जाता है। और सनातन गोस्वामी के पास में एक कंबल था, नया कंबल था जो उनकी बहनों ने दिया था, चैतन्य महाप्रभु केवल नजर पड़ा उस कंबल के ऊपर, सनातन गोस्वामी तुरंत जाके उस कंबल को फेंक दिया, बोला कि ये नहीं चाहिए मुझे पुराना दो, इस प्रकार का वैराग्य, और दूसरा दीनता जिसके पास है उसको खंटी माला ताप, तीसरा कृष्ण को ही प्राप्त करना है, कृष्ण के अलावा कृष्ण प्रेम के अलावा मेरे जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है, ये प्रकार की अनुभूतियों को उस शिष्य में देख के गुरु अति प्रसन्नता से उनको कहते हैं कि तुम आज तक लल्लू था पंगू था तुम वो था ये था, आज से तुम्हारा बंटी बुंटी वो नहीं है, तुम कौन हो, अगर किसी का नाम बंटी है समझ लो आज से तुम्हारा नाम बलदेव दास, और तुम्हारा नाम तो तुम टिंगू हो, तुम्हारा टिंगू नहीं है त्रिविक्रम दास, ऐसा कुछ देंगे नाम, he'll give something some name कृष्णस नेम, या उनके भक्तों का, या भगवान के अंतरंग शक्ति राजरानी गोपियां या महान आचार्य उनके दास के रूप में दास नाम दिया जाता है, he gives you the दास नाम, ये तीसरा है दास नाम। उस दिन गुरु आपका जो साधारण स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि आपको साधन में प्रविष्ट कराया जा रहा है, वैसे हमारे स्वरूप जो है साधारण स्वरूप होता है, ये एक निर्दिष्ट स्वरूप होता है, साधारण स्वरूप क्या है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, ये जो है हमारे साधारण स्वरूप है, स्वरूप ऑफ द सोल, लेकिन निर्दिष्ट स्वरूप जो है राग भक्ति के स्तर में हमको प्रकाशित होता है, जिसको सिद्ध प्रणाली वगैरह कहा जाता है, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, जो हम आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ कौन है उसका जो स्वरूप का प्रकाशित एक विशेष गुरु करते हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी साधना की बात चल रहा है, इसलिए हमारा जो साधारण संविधानिक स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण, उस दिन गुरु आपको ये दास नाम प्रदान करते हैं, जैसे आप दीक्षा कल जो ग्रहण कर रहे तो आप आएंगे, पहले गुरु आपसे पूछेंगे चार नियम क्या हैं, अब बताएंगे चार नियम, मास ग्रहण करना, नशा करना, अवैध संग करना। तो एक बार ऐसा किया कि
गुरु ने पूछा कि दिशा चल रहा था, बोले चार नियम क्या है? ने कहा कि मांस खाना, व्यभिचार करना। तो सब लोग इतना हंस पड़े, अच्छा वक्त था। लेकिन वो घबराहट में देखो उल्टा। तो व्हाट आर द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, हम ऐसे तीसक नहीं करना, ये बोलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इतना घबरा जाते हैं। अच्छा, वो घबराहट भी अच्छा है। ये घबराहट इसलिए है क्योंकि वो एक प्रकार का आदर की भावना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हो रहा है अस्तित्व में, इसका मैं काबिल नहीं हूं, मैं किसको कैसे संभालू, ऐसी भाव की वजह से उनको थोड़ा घबराहट होता है। तो संभ्रम सेवी मानो, संभ्रमता आती है, तो संभ्रमता में कभी कभी ऐसा गड़बड़ कर देते। और कभी कभी ऐसा हुआ कि प्रणाम मंत्र करो, तो गुरु के सामने गुरु का प्रणाम मंत्र उच्चारण करना होता है, तो प्रणाम मंत्र भी बराबर भूल जाते हैं। और एक बार ऐसा हुआ, दीक्षा के समारोह हो रहा था, प्रणाम मंत्र कुछ बोल रहे थे, तो गुरु ने कहा इनको माइक दो, उनका स्वयं अपने हाथ से माइक दिया, तो बोला प्रणाम मंत्र, बोल ही नहीं पा रहे थे। तो ये सब चीजें होता है, लेकिन ये सोचना नहीं चाहिए कि दोष है करके, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनका, वो ऐसा क्योंकि ऐसा चीज उनको प्राप्त हो रहा है जो उनको इस जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ, अनेकों अनेकों जन्मों से कभी प्राप्त नहीं हुआ, उसका अनुभव कर रहे हैं। He is experiencing that। उस अनुभव में नयनम गलद सुधारया, वदनम गदगदर उदया गिरा, पुलके रिचितम बभु, कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। वैसे सारे भाव के लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है ऐसे भक्तों से जो इस प्रकार अनुभव किया करने वाले हैं, ऐसी जो मनोभावना हमेशा बना के रखे। लेकिन वो दीक्षा के दिन रहता है और बाद में अभी हो गया दीक्षा, प्रभु जी आप जानते हो अभी मैं तो आपका गॉड ब्रदर हूं, गुरु भाई हूं, अभी हमको भाई करके बुलाने का, मैं गॉड सिस्टर। तो एक बार एक लेक्चर में ऐसे दीक्षा का लेक्चर हुआ, उसके बाद सारे जैसे दीक्षा होने के बाद एक महाराज ने कहा कि आई हैव इनिशिएटेड यू, मैं आपको दीक्षा दिया हूं। दीक्षा दिया हूं इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे प्रभु जी थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा कि दीक्षा के प्राप्त होने के बाद आपको और नम्र रहना है, यू शुड बिकम मोर हम्बल, डोंट बिकम पफ्ड अप दास ब्रह्मचारी, डोंट बिकम फॉल्स इगो देवी दासी। पफ्ड अप दास ब्रह्मचारी, पफ्ड अप दास ब्रह्मचारी का क्या है, फुल गया अभी तो, आई एम इनिशिएटेड, के जाने ब्राह्मण दीक्षा छे हमारा ये है। तो इस प्रकार की मनोभावना को त्याग करना है, अभी मैं दीक्षित हूं। दीक्षित का अर्थ क्या है, जिम्मेदारी है। किसका जिम्मेदारी है कि मैं इस प्रकार की जो मनोभावना, दैन्य मनोभावना, इस भौतिक जगत की विरक्ति का मनोभावना, कृष्ण को ही प्राप्त करना यही मेरा जीवन का उद्देश्य है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे और किसी के बारे में बात नहीं करना, और किसी के बारे में सुनना नहीं है, कृष्ण के बारे में हो तो मैं सुनूंगा और उसके बारे में हो तो मैं बोलूंगा। तो इस प्रकार की जो मनोभावना को हमेशा बना के रखने की जो जिम्मेदारी का व्रत है, हम दीक्षा के दिन लेते हैं। तो दास नाम, उस दिन बहुत गुरु कृपा करके दास नाम देते, और जय भी हिजोलने शिल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नाम देने से पहले सबसे वो निवेदन करते कि मैं अभी नाम दे रहा हूं आप सबको, वो नाम देने के बाद झगड़ा मत करना एक दूसरे से, मेरे गुरु ने मुझे अच्छा नाम दिया, उसको अच्छा नाम दिया, ऐसा बात मत करना। मैं सोचा ऐसा क्यों प्रवचन दे रहे, तो मैं बाद में पता लगा कि बहुत सारे ऐसे इमैच्योर होते हैं, वो इस प्रकार व्यक्त किए महाराज के पास, महाराज मुझे तो ऐसा नाम नहीं दिए, उनको तो और अच्छा नाम दिए। तो मैं ऐसे सोच रहा था ऐसा क्यों बता रहे, तब मैंने याद किया जिस दिन मेरा दीक्षा हुआ था, तो ये मेरा दीक्षा हुआ था जुहू में हुआ था, तो उस समय 11 फरवरी था 1998। तो जैसे दीक्षा हो गया, मेरे साथ में बहुत सारे भक्तों ने दीक्षा लिया,
कम से कम 10-15 भक्तों ने कहा, प्रभु जी गुरु महाराज का आपके ओर बड़ा विशेष कृपा है। मैं बोला ठीक है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने बोला क्यों, तूने कहा कि प्रभु महाराज ने आपको बहुत सुंदर नाम है। मैंने वाह, तो कृष्ण के सारे नाम सुंदर है और आचार्यों के सारे नाम सुंदर है। और एक का एक भक्त का नाम पड़ा यमराज दास। अरे तो जितने सभा में बैठे थे सब हंसने लगे और वो उनका चेहरा देखने को सच में बहुत दुखी हो गए। तो मैंने उनको समझाया, वो विरार में रहते हैं। हाँ विरार नहीं, स्टेशन विरार नाला सा भरा में रहते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। यही तकलीफ है। दीक्षा हो गया, मेरे गुरु ने सारे कर्मों को ले लिया, हो गया अभी मैं, आई एम लिबरेटेड सोल। नहीं, इनिशिएशन है दीक्षा का। अंग्रेजी अर्थ क्या है, इनिशिएशन। कितने लोग जो है इनिशिएशन शब्द का अर्थ जानते हो, हिंदी में क्या है उसका अनुवाद, शुरुआत। उसे शुरुआत हुआ है, लेकिन क्या सोचते हैं, अंत हो गया, अभी बस एंड हो गया। नो, इट इज द बिगिनिंग। तो मैं बाद में उनको समझाया, रोजी यमराज जो है वो महाभागवत है, महाजनों में एक यमराज है। इतना ही नहीं, जो 24 घंटा भागवत पढ़ते हैं यमराज, और यमराज के दरबार में नारद मुनि हमेशा कृष्ण का गुणगान करते हैं, और यमराज जो है भागवत के प्रवचन देते हैं, तो उनको थोड़ा सा होश आए। नहीं तो, तो और बहुत सारे लोगों का अलग अलग नाम होता है, तो नाम से दुखी नहीं होना है। ये नाम में महत्वपूर्ण चीज क्या है, दास, वो महत्वपूर्ण है। तो कभी भी जब आप किसी को पुकारते हो, आप पुकारना चाहिए जैसे वनमाली प्रभु, वैसे उनका नाम वनमाली दास है। और जैसे अपना पहचान अगर करना है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप कोई आके मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है, जानते हो मेरा नाम क्या है, कमल लोचन प्रभु। नहीं, मेरा नाम है कमल लोचन दास। चाहे वो कोई भी हो, दास या दासी, वो महत्वपूर्ण है। वो पहले के जो सब है वो कृष्ण के नाम है, कृष्ण के अनेकों नाम है, अनंत नाम है, नाम नाम कारी बहुदा, अनेकों नाम है। और सारे नामों में कृष्ण ने सारे शक्तियों को पेश किया। ऐसा नहीं कि ये सुंदर नाम है, इसके अंदर जो है कृष्ण ने ज्यादा शक्ति दिया है, इसके अंदर जो है कम शक्ति दिया है, ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है अपने नामों में तारतम्य नहीं करते। तो ये दास नाम ये अति महत्वपूर्ण है। दास नाम का अर्थ ये है कि उस दिन हमारी जो संबंध है कृष्ण के साथ, दास के रूप में जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, इस संबंध को स्थापना कर रहे। इसलिए दीक्षा गुरु जो होते हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन जी जो हमारा संबंध अधिदेव है, उनके प्रतिनिधित्व करते हैं। साक्षात श्री श्री राधा मदन मोहन जी, जिनका प्रणाम मंत्र क्या है, कौन कह सकता है बताइए, जिनको जानते हो उच्चारण कीजिएगा। सुतोर भंगुर महामंद मतेर गति मत सर्वस्व ब्रह्मभोजो राधा मदन मोहनो, याद कर लीजिएगा। दीक्षा हो रहा है तो एक दिन बचा है ना, जिसको नहीं मालूम है याद कर लीजिए, और जिसका दीक्षा हो गया है तो अभी तो हो गया, हमको याद करने की जरूरत नहीं है अभी, ऐसा नहीं है। ये क्लास जो है जिसको दीक्षा हो गया उसके लिए भी है ना लोहिताक्ष प्रभु। हाँ, तो ये क्लास उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि उस दिन जो दीक्षा दे रहे है वो कौन दे रहे है, जगत त्रय गुरु, कृष्ण ही एकमात्र गुरु है। लेकिन वो कृष्ण जगत त्रय गुरु, वो मेरे दीक्षा गुरु के रूप में उपस्थित है। वो कृष्ण के कौन से स्वरूप है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी है। वो साक्षात हरित्वेन, साक्षात राधा मदन मोहनो मेरे सामने है, और मुझे ये जपमाला देते हुए क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम है, कोई कौन दीक्षा ले रहे, कल कौन कौन दीक्षा ले रहे, इधर आप ले रहे, आप ले रहे, आप ले रहे, बाकी सब लोग क्या कर रहे। हाँ, वो सोच रहे अभी क्लास चले दो, जाने दो, उनको कल दीक्षा से महत्वपूर्ण है। हाँ, तो दीक्षा का अर्थ जानना जरूरी है। जो लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे, ये जो क्लास है इसको दीजिएगा, जो दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको दीजिए, कम से कम आज शाम को तो सुने, तो सुनेंगे तो मालूम पड़ता है कि इसका महत्व क्या है। तो नहीं, गोइंग फर्दर, तो वो देते आज से तुम्हारा नाम ये है हरिदास कृष्णदास राधा गिरिधारी दास ये देते हैं. दिस इज व्हाट इज द थिंग. इसको दास नाम कहा जाता है. इसको जिस दिन दास नाम दिया जाता है जिस समय उसी समय आप मुक्त हो. एट दैट टाइम यू आर लिबरेटेड. क्यों? भागवतम में कहा गया है मुक्ति का परिभाषा. मुक्ति का परिभाषा क्या है कौन कह सकता है? वेरी गुड. मुक्ति रित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही. मुक्ति का अर्थ क्या है? हित्वा त्याग करना. क्या त्याग करना? अन्यथा रूपम. अभी तक मैंने रूप धारण किया. मैं इसका पति हूं, मैं इसका पत्नी हूं, मैं इसका बच्चा हूं, मैं उसका पिता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, इतना हद तक भी मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इसको भी त्याग करना है. तो जन्मतः कुछ लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए समझ लीजिए वो बचपन में उनका संस्कार हुआ है. क्या संस्कार हुआ है? यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है. उस दिन उनको भी वो भी त्याग करना है. He has to give it up because गुरु का संपूर्ण शरणागति लिया है तो इसलिए मैं ब्राह्मण हूं. वो योग्यता भी जो महान माना जाता है वैदिक दृष्टिकोण से उसको भी त्याग करता है. अन्यथा रूप है. एक बार एक भक्त के साथ वो बहुत हुआ लेकिन वो माने नहीं. लेकिन क्या किया, रोने के अलावा मैं कुछ और कर नहीं पाया. जिस दिन मेरा ही दीक्षा हो रहा था वो ब्राह्मण परिवार में से थे. मैंने कहा मैं ही ब्राह्मण परिवार में से हूं लेकिन मैंने अपना जो यज्ञोपवीत है वो निकाल दिया है. क्यों? क्योंकि अन्यथा रूपम इसको त्याग करना है. क्योंकि गुरु मुक्त कर रहे हैं. जो मुक्त कर रहे हैं और अभी पकड़ के बैठे हो अन्यथा रूपम के साथ भौतिक चीजों के साथ ये गलत बात है. एक जो है आपको खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत की ओर आप इसको पकड़ के बैठे हो. मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, इसको छोड़ो. लेकिन उन्होंने निकाला नहीं. और इतना हद तक कि कहना नहीं चाहिए उन्होंने क्या किया उसको छुपा के रखा. इतना आसक्ति कि मैं ब्राह्मण परिवार में से हूं. मैंने कहा आपको इतना महान चीज मिल रहा है जो अनेकों जन्म जन्मांतर से नहीं मिला. उस चीज को प्राप्त करके समय तुम एक क्षुद्र चीज को आसक्ति के साथ बैठ के पकड़ के बैठे हो. इट इज योर फुलिशनेस. अन्यथा रूपम मैं ये रूप मैं ब्राह्मण हूं. चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? नाहम विप्रो. इन सारे श्लोकों को उन्होंने सुनाया, पूरा रास्ते पर सुनाया लेकिन वो सुना नहीं. ही डिड नॉट हियर. इसके वजह से उनका स्थिति बहुत अधोगति में है, बहुत दुखी है. लेकिन इतना दुख में भी अहंकार अभी तक नहीं गया है. क्यों? अपराध के वजह से. एक व्यक्ति जो है आपको उद्धार करने के लिए इतना कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, अस्तित्व में रोज जिस दिन दीक्षा दे रहे हैं उनका जो खतरा है. क्या खतरा है? एक तो प्रचार के हेतु संस्था के लिए जुड़ रहे हैं लेकिन दीक्षा के दिन जो उस शिष्य के ऐसे कर्म हैं जिसके द्वारा उनकी साधना में अत्यंत बाधक हो सकते हैं उन कर्मों को हजम करने के लिए तैयार है. वैसे गुरु के पास जाके कुछ चीजों को छुपाना और क्षुद्र चीजों के प्रति आसक्ति व्यक्त करना ये कहां का हित है? ये कहां का न्याय है? ऐसा सोचना चाहिए. तो मुक्ति रित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही. मुक्ति का अर्थ है अन्यथा रूपों को त्याग करना और स्वरूप में स्थित होना. और उस स्वरूप में स्थित होने के लिए दीक्षा दे रहे हैं. और उस दिन क्या करते हैं गुरु? आपको दास नाम, आप इस दिन से कृष्ण दास हो, आपको मुक्त कर रहे हैं. ही इज लिबरेटिंग यू. इसलिए सनातन गोस्वामी पाद जब चैतन्य महाप्रभु के पास आके पूछते जोदी मोरे उद्धार लो, अगर आपने मुझे उद्धार किया तो मेरा कर्तव्य क्या है बताइए. इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे लेकिन इधर पहला लाइन लेंगे जोदी मोरे उद्धार लो, आपने मुझे उद्धार किया है तो मुझे अपना कर्तव्य बताइए. यानी दूसरे शब्दों में सनातन गोस्वामी पाद ने चैतन्य महाप्रभु कहा कि आपने मुझे उद्धार किया है तो मुझे बताइए मुझे क्या करना है. यानी मुझे उद्धार किया है आपने, यू हैव डिलीवर्ड मी. तो यह साधारण कार्य नहीं है. आगे कहीं और जाके मुक्ति होने वाला नहीं है. अगर जो कल दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस दिन आज इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मैं मुक्त कर दिया है मुझे इस भौतिक झंझटों से, तो ये भाव ये समझ कभी आगे आने वाला नहीं है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आई एम डिलीवर्ड ऑन दैट डे बाय माय स्पिरिचुअल मास्टर. मैं गुरु ने मुझे उसी दिन उद्धार किया है दास नाम देके. अन्यथा रूपम स्वरूप अवस्थित, स्वरूप क्या है? कृष्ण है नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उस दिन दीक्षा के दिन प्राप्त होता है, ये दास नाम है। उसके आगे जाते हैं, दास नाम के बाद क्या है? नाम के बाद मंत्र। अभी नाम मिल गया, हरि बोल, मेरा स्पेशल नेम मिला है, मुझे मालूम है ऐसा स्पेशल नेम मिला है, किसी को नहीं मिला आज तक, अभी तो हो गया नहीं। दास नाम मिलने के बाद क्या करना चाहिए? गुरु को मालूम है मैंने तो नाम दे दिया है, लेकिन इसका 100% रियलाइजेशन नहीं हुआ है, उसका 100% साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो इसलिए ये दास नाम के साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए ये मंत्र जप की आवश्यकता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के द्वारा हम क्या करते हैं, इस दास नाम, मैं कमल लोचन दास हूं, इसकी साक्षात्कार मैं करता हूं। आई रियलाइज दैट आई एम कमल लोचन दास। जैसे डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने से ही वो व्यक्ति को डॉक्टर करके बोलते हैं, लेकिन उसको सर्जरी करने के लिए देंगे नहीं, उसको इलाज कराने के लिए, उसको ऑपरेशन करने के लिए नहीं देंगे। जैसे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो उनको इंजीनियर करके पुकारा जाता है, इट इज ट्रू। ऐसा नहीं कि डिग्री प्राप्त होने के बाद भी इंजीनियर बनता है, नहीं, कॉलेज में जाते वो इंजीनियर बन जाता है, लेकिन उस वो पूर्ण तरीके से वो इंजीनियर नहीं बना, पूर्ण तरीके से डॉक्टर नहीं बना, लेकिन उसको बोलना चाहिए डॉक्टर है इंजीनियर। वैसे ही अभी मैं कमल लोचन दास, लेकिन उसका साक्षात्कार कैसे होगा? ये मंत्र जप के द्वारा होगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र अर्थ क्या है? राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए, सेवा में लगाइए, आई वॉन्ट टू सर्व 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 सेवा। तो ये दास नाम जो है हमको सेवा दास नाम का साक्षात्कार कराने के लिए मंत्र दिया जाता है। जो जनरल मंत्र यह सबको दिया जाता है दीक्षा के समय क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दास नाम दिया जाता है। इसका साक्षात्कार करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है, और बाद में ब्राह्मण दीक्षा के समय आपको 7 प्रकार का गायत्री मंत्र दिया जाता है, और ये मंत्र उच्चारण अति महत्वपूर्ण है। अगर दीक्षा के बाद मंत्र जप नहीं करता है तो वो दीक्षा के दिन जो दास नाम प्राप्त हुआ है उसका साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। यू विल नॉट रियलाइज दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये मंत्र जप के द्वारा हमारी ये साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र के बाद आखिरी वाला चीज क्या है? याग। याग का अर्थ क्या है? याग यज्ञ, इसका अर्थ है सैक्रिफाइस, यानी सैक्रिफाइस, इसको यज्ञ करके आप जानते हो। सैक्रिफाइस का अर्थ यह है, मान लो कि मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं सोचता हूं मेरा है, उस मनोभावना को निकालने के लिए मेरा मेरा करके जो मनोभावना है, इस प्रकार की जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए मेरा करके जो समझ के बैठा हूं उसको भगवान गुरु को अर्पण करना है। ऐसा कौन सा चीज है जो मेरा करके समझ के बैठे हैं? अनेकों चीजें हैं, अनेकों अनेकों चीजें हैं, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरा शरीर, ये सब चीजों को हम भगवान को अर्पण करेंगे, इसको यागा कहा जाता है। और भगवान को अर्पण कैसे करेंगे? भगवान तो गोलोक वृंदावन धाम में अनेकों लीलाएं कर रहे हैं, तो इसलिए उसी भगवान श्री कृष्ण जो परा के स्तर में है, गुरु की कृपा से वही भगवान हमारे सामने विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। उस दिन दीक्षा के दिन गुरु आपको एक विग्रह प्रदान करते हैं। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि प्रत्येक शिष्य को अलग अलग विग्रह दिया दे देते, आप इस विग्रह का पूजा करो, आपके पास जो भी चीजें हैं सब कुछ समर्पित कर दो इस विग्रह को, आपका शरीर सब कुछ दे दो, एवरीथिंग यू गिव इट टू दिस लॉर्ड और सेवा करो। तो याग का अर्थ है वर्शिपिंग द डेटी। अभी आप बोलते हैं दीक्षा हुआ था लेकिन हमको तो गुरु महाराज ने नहीं दिया, हमको विग्रह दिए हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस याग को उन्होंने उसको एक बड़ा सुंदर सा मोड़ दिया है और बहुत सुंदर प्रकार व्यवस्था किया है। तो ने क्या किया, आप श्रील प्रभुपाद जी के इनिशिएशन सेरेमनीज के वीडियो है आप जरा देखिए, मैंने एक बार देखा दीक्षा देने के बाद सारे लेक्चर वगैरह समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि नाउ यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा सो यू चैंट हरे कृष्णा एंड सर्व श्री श्री राधा गोपकुलानंद जी। इधर जब दीक्षा दिया जाता है गुरु क्या करते हैं कि आज से आप हरिदास हो राधा रानी दास ही हो तो अब क्या करो हरे कृष्ण महामंत्र को नित्य रूप में जप करते हुए ऐसे दिखाएंगे श्री श्री राधा गिरिधारी जी का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई का सेवा करो। सभी को एक ही विग्रह देते हैं सो ही गिव्स वन डेटी फॉर एवरीवन। इसके द्वारा क्या होगा संकीर्तन होगा नहीं तो क्या होगा सब लोग एक एक कोने में बैठ के अपना अपना विग्रह करते रहेंगे बाद में हरि बोल नहीं ऐसा नहीं संकीर्तन सब लोग साथ में आके विग्रह का सेवा करो। तो खास करके उन गृहस्थों को बहुत ध्यानपूर्वक देना चाहिए आपके घर में जो विग्रह है वो विग्रह श्री श्री राधा गिरिधारी के विस्तार है क्योंकि किसी कारणवश मंगल आरती नहीं आ सकते घर में आके मंगल आरती कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी है प्रभु जी इधर बहुत सारे सेवाएं हैं आप भाग जाएंगे घर में मेरा मेरा राधा राधा माधव का अभिषेक करना है। आपका राधा माधव अगर मायापुर के भी है तो उधर पहुंच गए ही इज गॉन देयर। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो मंदिर के जो मूल विग्रह हैं वो आपके विग्रह है। तो एक सुविधा के रूप में अपने अपने जो विग्रह होते हैं वो विग्रह अपने आप को विस्तार करते हैं आपके घरों में। लेकिन जब फेस्टिवल जब सामूहिक उत्सव होते हैं उस समय आपका विग्रह का सेवा जो पहले कर दीजिए नहीं तो बाद में कर दीजिए नहीं तो नहीं भी करेंगे इधर ही राधा गिरिधर का सेवा करने से उनका भी सेवा हो गया वो समझना चाहिए। तो ऑन दैट डे ही गिव्स द डेटी। जैसे विग्रह जो है एक बच्चे के रूप में हमारे सामने प्रकट है ये विग्रह जो है हमारे सामने असहाय बच्चे के रूप में प्रकट है। जैसे माता इस बात को जानती हैं जब आपके जब बच्चे पैदा हुए उस समय उस बच्चे को कैसे देखभाल किए चड्डी भी आपने पहनाया खाना भी आप बना के उनको खिलाया वो असहाय है कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी रूप में जिस प्रकार आपने अपने बच्चे को देखभाल किया कितना भी तकलीफ आए बच्चे को देखभाल करना कम किया भले कभी कभी ऐसा आर्थिक समस्याओं की वजह से आपके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है आपने नहीं खाया फिर भी अपने बच्चे को खिलाया कि नहीं क्यों इस बच्चे को देखभाल करने की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उसी प्रकार जिस दिन दीक्षा लिए हैं उस दिन गुरु क्या करते हैं ये मंदिर का जो विग्रह को देखभाल करने की जिम्मेदारी को आपको प्रदान करते हैं। जिम्मेदारी का अर्थ क्या है भले ही मेरे लिए कुछ ना रहे लेकिन राधा गिरिधारी का देखभाल होना चाहिए। भगवान कृष्ण की इस मंदिर का देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है उस दिन दीक्षा के दिन आपको सौंपा जाता है। क्यों अगर आप भगवान की सेवा का जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो इंद्र तृप्ति का जिम्मेदारी लेंगे क्योंकि सबका रहता है कि मैं जिम्मेदार बनूं आई वॉन्ट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन क्या करेंगे ये भौतिक जिम्मेदारी को अपना लेंगे अगर आध्यात्मिक जिम्मेदारी को नहीं लेंगे तो सो एवरीबडी इज रेस्पॉन्सिबल। तो मैं कुछ दिन पहले एक भक्त से बात कर रहा था एक दीक्षित भक्त मैंने कहा कि प्रभु जी मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है तो मैंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनता है ये मंदिर का पूरा निर्माण कार्य को संपूर्ण करके सफल करना। मैंने कहा प्रभु जी क्या है अभी जितना हो सके हम जरूर करेंगे। अगर कोई इस प्रकार कहता है तो उनका जो दीक्षा वापस लिया जाता दे दो वापस आप पहले का नाम क्या था वही नाम रख लो क्या जरूरत है सब चीज का व्हाट इज द यूज ऑफ इट। अगर नहीं समझे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड जिस दिन दीक्षा हुआ उस दिन ये याग का अर्थ क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विंग कृष्णा। जब हमारे बच्चों को हमारे परिवार को देखभाल करते हैं कितना मेहनत करते हैं आपका घर चलाने के लिए घर में मान लो कोई चीज की कमी होता है कहां कहां भाग के लेके उठा के आप क्या करते हो उसको पूर्ण करते हो है कि नहीं। लेकिन जरा सा कुछ मंदिर में इधर कमी दिखाई पड़ता है तो हम बोलते हैं प्रभु जी आप मंदिर में ऐसा 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 शुरू कर देते तो व्हाट अबाउट यू आप क्या कर रहे थे व्हाट आर यू डूइंग खाली देख के कमेंट कर रहे हो नहीं अगर ऐसा कर रहे तो यू आर नॉट इनिशिएटेड आप दीक्षित नहीं हो खाली नाम के वास्ते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जानना चाहिए आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑन दैट डे ऑफ सर्विंग राधा एंड कृष्णा, इसको याग कहा जाता है। उस दिन आपको विग्रह प्रदान करते हैं, सामूहिक तरीके से विग्रह प्रदान किया जाता है, आज से आप राधा गिरिधर जी का सेवा करो करके प्रदान किया जाता है। तो ये पंच संस्कार कहा जाता है। दीक्षा के दिन आपको ये पांच चीजें प्राप्त होता है, घंटीमाला, तिलक, दास नाम, मंत्र और विग्रह, ये पांच चीजें प्राप्त होता है। और ये पांच चीजों की प्राप्ति के पीछे उद्देश्य क्या है? ताप, ताप का अर्थ है, घंटीमाला का अर्थ है ताप, इसका अर्थ है कि दो चीजें, नम्रता और वैराग्य। वैराग्य में तंग आ चुका है भौतिक जगत से और दीन हूं मैं, आपके अलावा कोई और मेरा कोई शरण नहीं है, आप ही के पास आऊंगा। दूसरा बात, कृष्ण के अलावा मुझे और किसी को प्राप्त नहीं करना है, मेरी सारी समस्याओं का समाधान कृष्ण की प्राप्ति में, धन की प्राप्ति में नहीं है, समस्याओं का समाधान जो है कृष्ण कथा में है, कृष्ण की सेवा में है। एक बार मुझे याद है, प्रभुपाद जी के पास एक वक्त जो है भागते भागते गए, प्रभुपाद जी बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी शांति से बैठे, उनको देखते हुए और वापस जोर से उद्वेग व्यक्त कर रहे थे, बहुत तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, कोई सुनता नहीं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इधर वो खराब छो रहा है, वो खराब गड़बड़ हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने देखते हुए कहा, हैव यू रेड द भगवद गीता फ्रंट टू बैक, कवर टू कवर? आपने भगवद गीता को पहला पेज से आखिरी पेज तक पढ़ा? तो भक्त ने ऐसा रखा, दुरंत चले गए। चार दिन वो कमरे में बैठ के पूरा भगवद गीता को पहला पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़े, पढ़ के वापस जा रहे थे तो प्रभुपाद को बुलाया, यू टोल्ड देयर इज सम प्रॉब्लम, आपने कहा कुछ तकलीफ है, तो उनका कहा कि सारे तकलीफों का समाधान हो गया है। तो कृष्ण की प्राप्ति में, भगवान की भगवद गीता के अध्याय में, भागवत के अध्याय में सारे समस्याओं का समाधान है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए कहीं इधर उधर जाते हैं, प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम का समाधान जो है भगवद गीता भागवत में है। जो भक्त लोग आते हैं वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, इसका अर्थ है वो पढ़ाई नहीं करते, प्रॉब्लम ये है, यू डोंट रीड, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज वाई यू अदर हैविंग अदर प्रॉब्लम्स। आपके पास समस्या है इसलिए है क्योंकि आपके पास एक बड़ा समस्या है, क्या है वो, आप गीता भागवत को नहीं पढ़ते, प्रवचन में नहीं बैठते, यही आपका समस्या है, जिसकी वजह से आपको अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये कृष्ण को ही प्राप्त करना है, ये भाव को तिलक के द्वारा सूचित किया जाता है, ऊर्ध्व पुंड्र टेक्निकली। उसके बाद जैसे दो प्रकार के क्वालिफिकेशन, कंठीमाला, तिलक धारण हुआ, तो गुरु जी हमको क्या प्रदान करते हैं, दास नाम, यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आप हरिदास हो, आप ये दास हो, दासी हो, इस प्रकार नाम देते हैं। वो नाम को साक्षात करना है तो क्या करना होगा, मंत्र की जप करना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये मंत्र की जप करते करते अभी भी आ सकती है, हरे कृष्ण, अच्छा मेरा पैसा इधर पड़ा है, हरे कृष्ण, अच्छा अच्छा मेरी पत्नी आई है, मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगी अभी, हाँ अच्छा अच्छा मेरा बेटा कैसे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नहीं, जो भी मेरा है, मानस देह गेह जो कि चुमोर अर्पिल तुआपदे नंद, अर्पण कैसे करेंगे, अभी सब कुछ है ना, मैं अर्पण कर दूंगा, लेकिन इधर नहीं करूंगा, राधा गिरिधर के पास नहीं आऊंगा, जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण है ना उनको दे दूंगा मैं। वाह बहुत बुद्धिमत्ता है ना, व्यक्ति ने कहा अभी कृष्ण तो है ना गोलोक वृंदा, मैं तो उनको अर्पण करता हूं। वही कृष्ण आपका जो सेवा है, आपके द्वारा जो द्रव्य है उसको स्वीकार करने के लिए विग्रह के रूप में उपस्थित है, इज देयर एज ए वेडेटी। तो उस दिन गुरु आपको विग्रह की सेवा का जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। तो ये दीक्षा का दीक्षा के दिन ये चीजों को हम प्राप्त करते हैं, प्राप्त किए तो उसके माल के रखना हमारा कर्तव्य है, कम से कम संभालने की बात छोड़िए, कम से कम जानिए तो इसका महत्व, और धीरे धीरे से इन सारे बातों को समझते हुए आध्यात्मिक प्रगति करते हुए हम सब साथ गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी, कोई प्रश्न है तो पूछिए, एनी क्वेश्चंस।
इनका प्रश्न है कि पंचतत्व किससे किससे दीक्षा लिया, ठीक है, माधवेंद्रपुरी से, गदाधर पंडित कौन से, पुंडरीक विद्यानिधि से, और श्रीवास ठाकुर का नहीं मालूम श्रीवास ठाकुर मैं जानता हूं, उल्लेख नहीं है कहीं। चैतन्य महाप्रभु के वात्सल्य भाव में पिताजी के रूप में थे, वो स्वयं नारद मुनि है, और अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु है, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, और गदाधर पंडित श्रीमती राधारानी कांश आदि गुरु है, वो सब लोगों ने दीक्षा लिया है। अगर वो नहीं लेते तो क्या सोचते लोग, हाँ, वो नहीं लेते मैं भी क्यों नहीं लू, वाई शुड। और कोई प्रश्न, एनी मोर क्वेश्चंस? अमी ही पंच संस्कार परमेत्मांत की हेतवा परमेकांतिकी, परमेकांतिकी का अर्थ है भगवद गीता का जो दूसरे अध्याय का 41 श्लोक है, क्या है वो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरनंदना, एक इधर भी एक शब्द आया परम एक, वो एक है, क्या है वो एक चीज, कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम वो एकमात्र साध्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ये पांचों हेतु है, यानी ये पांच चीजों के बिना वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ये है इनका प्रश्न है कि पति और पत्नी जब दीक्षा लेते हैं, लेने के बाद क्या ये गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर हो जाते हैं, गुरु भाई गुरु बहन हो जाते हैं? बड़ा टेक्निकल प्रश्न है माता जी का असियत में भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक है, अहम बीज प्रद पिता ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रद पिता, कृष्ण ही एकमात्र हमारे पिता है, सर्व योनि शिखौंते मूर्तिया संबंतिया तासाम ब्रह्म मध्योनिर अहम बीज प्रद पिता, मैं सबका पिता हूं। अगर कृष्ण सबके पिता है तो सभी लोग हमारे भाई बहन ही है, वो कुत्ता भी अपना भाई है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सभी भाई बहन ही हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर इस बात को कहते हैं, गृहस्थ भक्तों को विशेष इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो कहते हैं कि कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कुछ ऐसे नियम होते हैं शास्त्रों में जो पूर्ण आध्यात्मिक स्तर में है और सबके लिए लागू होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी चाहे वानप्रस्थ हो चाहे बुड्ढा हो, कोई भी किसी को लागू होता है। लेकिन कुछ वैरागी भक्त होते हैं और कुछ गृहस्थ भक्त होते हैं, लेकिन ये दोनों वास्तविकता में वैरागी हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों वैरागी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण में इन दोनों के अंतर है। तो सामाजिक दृष्टिकोण में अंतर होने के नाते पति और पत्नी दीक्षा लेने के बाद भी वो समाज के सामने पति और पत्नी के रूप में पेश करना है, भाई बहन के रूप में पेश नहीं करना अपने आप को। हाँ, तो कुछ दिन पहले चंडकोई प्रभु हमारे पास आए थे, प्रभु बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया, तो फोन आया, एक परिवार है हमारा मेंबर है, वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं कौन है, इधर है तो बुरा मत मानिएगा, वो लोग कौन है मुझे नहीं मालूम, तो मैं बोल सकता हूँ। तो मतलब क्या हो प्रॉब्लम हो गया, उनके पति ने क्या किया, वो ब्रह्मचर्य एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस बुक पढ़ा, उसके अंदर उन्हें ऐसा पढ़ लिया, यानी कहाँ पढ़ लिया, तो हर एक स्त्री को माँ के रूप में देखना चाहिए। तो उनकी पत्नी को उस समय से बोला कि माते माता जी, उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा है ये सच घटना है, ओ माता जी प्रश्न इसीलिए पूछ रही है, उनको मालूम उनके सामने हुआ था ये बात तब नासा तब मैंने कहा, तो छठवे प्रभु ने कहा कि प्रभु जी मुझे प्रमाण तो कुछ दो, मतलब प्रमाण बहुत है, तुरंत कंप्यूटर खोला तो प्रभुपाद का बहुत सारा है, उस सबको प्रिंट आउट निकाल के, चाणक्य पंडित का श्लोक है मातृवत् परधारेषु, वो सब को मैंने प्रिंट आउट निकाल के उनको दिया, भागवत में परपोर्ट्स में प्रभुपाद जी का जहां लिखते लेक्चर्स में बहुत सारा कोटेशंस दिया, तो उनको समझाया कि कभी भी अपने पति को पत्नी को मां करके पुकारना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। इट इज ए क्राइम, यू शुड नेवर सी। क्यों क्राइम क्यों है? क्योंकि मां का एक विशेष स्थान होता है, इट इज ए स्पेशल पोजिशन, और उसको पति के साथ मिलना नहीं चाहिए। ये केवल जानवरों के समाज में होता है, ये मनुष्य समाज में नहीं होता है। इट डजंट हैपन इन द ह्यूमन सोसाइटी, हैपन्स ओनली इन द एनिमल सोसाइटी। तो मनुष्य समाज में होने के नाते ये पालन करना है। भले ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ना किसी का पति पति है ना किसी का पत्नी पति है पत्नी है, लेकिन अभी एक समाज है, अगर सामाजिक नियमों को गृहस्थ पालन नहीं करता, भक्तिनो ठाकुर कहते हैं सामाजिक नियमों को अगर गृहस्थ पालन नहीं करता है, निश्चित रूप में उनकी आध्यात्मिक जीवन में बाधाएं आती हैं। इफ यू डोंट फॉलो द सोशल प्रिंसिपल्स, सोशल एटिकेट्स, तो गृहस्थ जीवन में निश्चित रूप में ये बाधाएं आती है। तो इसलिए कभी भी पत्नी को पति को भाई के रूप में पुकारना, या पति को इनको पत्नी को माँ के रूप में या बहन के रूप में पुकारना, ये गलत बात है। इट इज रॉन्ग। अस्तित्व में मूल रूप में सभी एक ही है, स्पिरिचुअल, बट यू शुड नेवर कॉल एक्सटर्नली। ठीक, हाँ, अच्छा प्रश्न है, जितना भी प्रश्न पूछ लीजिएगा कंफ्यूजन्स। तो इनका ये कहना ये है कि अगर मान लो कि एक भक्त है, दीक्षा लिए हैं, लेने के बाद अगर वो चार नियम पालन नहीं कर पाते, अगर वो जप नहीं कर पाते, कुछ पाप कार्य कर रहे, उसका जो रिएक्शन है गुरु स्वीकार करते हैं, गुरु को लगता है, इनका प्रश्न ये है, दीक्षा किसने दिया आपको? गुरु ने दिए। अगर उन्होंने दिए हैं, मान लो कि मैंने आपको एक पेन दिया, जब तक मैं चाहता हूं मैं आपके पास रख सकता हूं, क्योंकि मैंने दिया, मेरा पूरा अधिकार है आपसे वापस देना भी। ठीक है, वैसे ही गुरु ने आपको दीक्षा दिया है, तो ये वादा के साथ दीक्षा दिया, क्या कंडीशन के साथ दिया? कॉन्ट्रैक्ट के साथ दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट के साथ दिया? 16 माला जप करोगे, चार नियम पालन करोगे, भक्ति के साथ नियम पालन करोगे, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, है कि नहीं? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे, कौन जिम्मेदार है उसका? यू योरसेल्फ, मैं खुद जिम्मेदार हूं। लेकिन गुरु कृपावश उनको, ऐसे शिष्य को भी साथ में रखते हैं और देखते हैं, ठीक है एक बार हो गया ना, वो पाप मैं ले लूंगा, वो पाप लेना न लेना वो गुरु के ऊपर आधारित है, चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो तुम भोको जाओ, गेट लॉस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक तरीके से बहुत दयालु है गुरु, तो वो शिष्य के इन अपराधों को, पापों को सहन करते करते हैं, बहुत सारे पापों को सहन करते हैं, और उन पापों को स्वीकार करके वो हजम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को वादा किया है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे गुरु ने श्री प्रभुपाद जी को वादा किया कि मैं आपकी संस्था को आगे बढ़ाऊंगा, अन्य जगह इस प्रकार नहीं होता है, केवल इसी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में इस प्रकार अपार करुणा है। मान लो कोई बहुत किसी के कारणवश खो नहीं पा रहा है, फिर भी गुरु अपने पास रखते हैं, डांटते हैं लेकिन फिर भी अपने पास रखते हैं, ठीक है आज नहीं तो कल सुधर जाओ, अपने पास रखें। क्यों? एक ही है, वन रीजन, क्योंकि मैंने अपने गुरु को वादा किया है। क्या वादा किया है? कि मैं आपकी संस्था को बढ़ाने के लिए कुछ भी करूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, तो भगवान की सेवा करेगा, प्रचार करेगा, और एक व्यक्ति को कहीं ना कभी कभी ना कभी जुड़ेगा, इस आशा के साथ करुणा दिखाते हैं। लेकिन एक अपराध जो है वो स्वीकार नहीं करते और माफ भी नहीं करते, वो है वैष्णव अपराध। इसका प्रमाण क्या है? बलराम जी स्वयं। बलराम जी ने दुर्योधन का अनेकों दोषों को सहन किया, लेकिन जब दुर्योधन ने सोचा कि मैं पांडवों को मारूंगा युद्ध में, पांडव कौन है, वैष्णव है, तो दुर्योधन ने बलराम जी ने दुर्योधन से हाथ साफ कर लिया, जाओ मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता हूं, तुमको सपोर्ट नहीं करूंगा। वैसे है इतना हद तक कि अपने स्वयं बहन सुभद्रा को दुर्योधन को देना चाहते थे बलराम जी, उनके इतना प्रेम था, इतना प्रेम दिखाने के बाद भी, इतना विश्वास रखने के बाद भी, जब वो दुर्योधन ने वैष्णव अपराध करना शुरू कर दिया तो बलराम जी भी हाथ साफ कर लिए। इसलिए भक्तों सुनिए, बहुत बहुत केयरफुल रहिए वैष्णव भक्त वैष्णव अपराध से। अगर वैष्णव अपराध करोगे, भले आपके गुरु बहुत आपसे प्रेम करते हैं, कितना भी मानते हैं, आपके साथ में बैठाते हैं, एक दिन उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, यू हैव टू गिव हिम अप। अपने आप ऐसा प्रसंग उत्पन्न होता है कि आप छोड़ के चले जाओगे या वो गुरु आपको छोड़ देंगे, ही विल लीव यू। ये वैष्णव अपराध से बच के रहना चाहिए, दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट। हमारी संस्था में सारे आचार्य क्या करते हैं, कितने भयानक सी पाप क्यों ना किया वो भक्त, वो शिष्य, मैंने स्वयं देखा है, आप भी देखे होंगे, कितना भयानक सा पाप करने के बाद भी वो शिष्य को वो छोड़ते नहीं है, ही विल नॉट लीव। लेकिन वैश्य अपराध करना शुरू किया, छोड़ देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न, एनी मोर क्वेश्चंस? यस या इनका प्रश्न है कि मान लो कि मैंने दीक्षा लिया है, कि अगर दीक्षा लिया तो मैं कोई और महाराज का लेक्चर सुनो, इस प्रकार के भाव आता है, तो क्या सही है? तो इसमें चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, क्या वर्णन है, दो प्रकार के गुरु, ऐसे तो चार प्रकार के हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण प्रकार के हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हमको संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं, तुम्हारा नाम है कृष्णदास हरिदास, और ये भौतिक जगत दुखाल शाश्वत है, ताप पुंड्र दास नाम मंत्र सब देते हैं, उस दिन आपको संबंध ज्ञान को आपके हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं। तो अभी मुझे घंटी माला दिया, तिलक दे दिया, भाई बहुत सारे भक्त, प्रभु जी ये क्या है, हो क्या रहा है, बताइए ना कुछ करो, हाँ व्हाट टू डू। तो ये जो भक्ति के जो नियम है, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, गुरु ने कहा, आज्ञा दिया, लेकिन उसको कैसे निर्वहन करना है, हाउ टू एग्जीक्यूट, उसको बताने वाले कौन है, शिक्षा गुरु। तो एक शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं। अगर वो भक्त सोचता है कि मैंने इनसे दीक्षा लिया, नहीं मुझे जम नहीं रहा, मैं किसी और से दीक्षा लूं, ऐसा विचार आया तो वेश्या है, वेश्या, वेश्या का अर्थ है प्रोस्टिट्यूट, जो अपने पति को छोड़ के किसी के पास जाना, ये वेश्यावृत्ति है, क्योंकि आपके आध्यात्मिक गुरु जो है आपके पति हैं, जो दीक्षा गुरु है वो आपके पति हैं, और शिक्षा गुरु कौन है, जो उस पति का सेवा कैसे करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करने वाले, उसको सिखाने वाले शिक्षा गुरु है। तो ये आध्यात्मिक गुरु दीक्षा गुरु को कैसे सेवा करना चाहिए सीखने के लिए, वो जनरली ऐसा होता है कि आपका जो दीक्षा गुरु है वो स्वयं भेजते हैं, इनसे जाके शिक्षा ग्रहण करना, इनके पास जाके शिक्षा ग्रहण करना। अगर वो नहीं करते हैं, अगर आपका कुछ इच्छा हो रहा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, आपकी जो दीक्षा गुरु का परमिशन के साथ जाके उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। और हमारी संस्था में जितने भी शिक्षाएं दिए जा रही हैं, वो सारे शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद जी का शिक्षाओं के ऊपर आधारित है। श्रील प्रभुपाद जी इज एटर्नल शिक्षा गुरु ऑफ इस्कॉन, इस्कॉन के शाश्वत सनातन शिक्षा गुरु है। जो हमारे दीक्षा गुरु कभी भी मना नहीं करेंगे आप प्रभुपाद जी से मत सुनो, और जितने भी अन्य दीक्षा गुरु हैं, जितने भी प्रमाणिक प्रचारक है, वो सभी क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी के वाणी को तो कह रहे हैं, कभी मना नहीं करेंगे। अगर आपको संशय है, मना कर सकते हैं या करेंगे क्या, उस संशय को दूर करने के लिए आपके दीक्षा गुरु से जाके खुलेआम पूछना चाहिए, मैं फलाना व्यक्ति से शिक्षा ले रहा हूं, क्या मैं ले सकता हूं? अगर मना करेंगे, जनरली करते नहीं है, करेंगे तो आपको शिक्षा ग्रहण नहीं करना है। मैंने आज तक कोई भी दीक्षा गुरु को, अपने जो शिष्य, कोई और इस्कान के वरिष्ठ वैष्णव के मुख से नहीं सुनने के लिए मना करते हुए आज तक ना देखा है ना सुना है। क्योंकि सारे शिक्षाएं क्या है, ठीक है, आपको प्रश्न समाधान हो गया, योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। हाँ, मैंने कहा कि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के आज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जब मैंने शिक्षा गुरु का नाम लिया है तो मैंने प्रभुपाद जी का नाम लिया, मैंने कोई वो बापू ये बापू इसका नाम नहीं लिया। आई नॉट टेकन दैट। प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी उस समय सारे उनके शिष्यों का दीक्षा गुरु थे। जब उनके शिष्य, उनके गुरु भाई उनके पास जाके जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, प्रभुपाद जी को बहुत खराब लगा। और स्वयं प्रभुपाद जी ने कुछ अपने शिष्यों को, जयपताका महाराज और कुछ अन्य शिष्यों को गौड़िया मठ में भेजा, आप उधर जाके आचरण सीखो, उधर जाके वैष्णव पंजिका सीखो, यज्ञ की विधि सीखो। और कुछ लोग ये सोचा कि प्रभुपाद जी तो कुछ ही हद तक बताए, मैं उधर जाके कुछ ज्यादा सीख के आऊंगा, अपने मन माने गए। प्रभुपाद जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है, अन्य संस्था अन्य कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिए हैं, he has given everything। भगवान की, कृष्ण के प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता है, सारे चीजें इस्कॉन में उपलब्ध है, इट इज देयर। अगर इधर से कुछ सहायता लेके आपको सेवा के लिए उपयुक्त है, वो विशिष्ट भक्तों के लिए अनुमति दिया जा सकता है, स्पेशल केस है, जनरल केस नहीं है। वॉट इफ ए क्लोज रिलेटिव कमिट्स वैष्णव अपराध आफ्टर इनिशिएशन, अगर एक बहुत करीबी भक्त है या मेरे बंधु है, वो वैष्णव अपराध करते हैं तो क्या होता है? देखिए, मान लो कि आप वैष्णव हैं, यू आर वैष्णव, एक दूसरे वैष्णव आपको अपराध करता है, प्रति अपराध करता है, क्योंकि ये वैष्णव है उनको बहुत सारा सजा भोगना पड़ता है, अपराध माना जाता है। लेकिन कोई और है, आपके रिलेटिव हो, बंधु हो, वो अवैष्णव है, अभी वो वैष्णव बने नहीं है, वो अगर वो आपके प्रति अपराध करता है, उनको पाप लगता है, तो अपराध में पाप में अंतर है। वैष्णव के प्रति अगर पापी व्यक्ति अपराध करता है या खराब करता है, जैसे नित्यानंद प्रभु के प्रति जगह मदाई ने क्या किया, उन्होंने अपराध किया, उनको तो उन्होंने बहुत पाप किया, भगवान स्वयं नित्यानंद प्रभु उनको मारना, तो ये पापी व्यक्ति जो है उनको भले वो गलत कर रहा है, ये वैष्णव सहन करता है। मान लीजिए आपका बंधु वैष्णव नहीं है, वो समझते नहीं है, अनजान है, अभी तक वो भक्ति में आए नहीं है, अगर वो आपको बहुत सारा दुख देते हैं, उनको सहन कर लेना चाहिए, सहन तो हमेशा करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, मुझे दुख देते देते कभी ना कभी ये वैष्णव बन जाएंगे, क्यों? मेरी नम्रता को देख के, जैसे नित्यानंद प्रभु उनकी करुणा को देख के जगाए मदाए उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो आपके जो बंधु हैं उनके प्रति ऐसी भावना रखना चाहिए, ये कब सुधर जाएगा, ये कब समझेगा हरिनाम करना चाहिए करके। अगर जो आपका बंधु वैष्णव है, वो भी दीक्षित है, उनका होश है, अगर वो ऐसा अपराध करता है, आपको सहन करना ही है, लेकिन वो जो आपका जो बंधु है उसका कोई गति नहीं है। जैसे वैष्णवाचार्य अपने गीतों में क्या कहते हैं, तुम्हार स्थान अपराधे नहीं परित्राण, भक्तों के प्रति अपराध करता है उसका कोई परित्राण नहीं हो सकता है। There is no way you can do offense, you can get rid of it. भगवान के प्रति अपराध हो गया तारे हरिनाम, हरिनाम के द्वारा जा सकता है, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध होता है। अस्तित्व में आप अगर वैष्णव हैं तो कभी आपको लगता ही नहीं है कि वो मेरे प्रति अपराध हो रहा है। भले ही वो व्यक्ति आपके प्रति अपराध कर रहा है, लेकिन कभी मैं उसको अपराध के रूप में स्वीकार ही नहीं करूंगा। ये हमारी वैष्णवता है। ये वैष्णवता के बल पे ऊपर लोगों का हृदय परिवर्तन कर सकते हो। एक भक्त मुझे एक बार आश्रम में इस प्रकार हो रहा था, आश्रम में नहीं कहीं कहीं जी से जगह, प्रभु जी आप मेरे प्रति बहुत अपराध कर रहे हो देख के बहुत हंसते हैं आप वैष्णव अपराध मत कर रहे यानी अपने आप को वैष्णव समझते हैं और सोचते हैं प्रहलाद महाराज के प्रति कितना अपराध हुआ उनके पिताजी के द्वारा। प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं सोचा कि वैष्णव अपराध कर रहे क्योंकि वैष्णव कभी यही नहीं सोचते कि मैं वैष्णव हूं, हमेशा सोचते मैं वैष्णव बन रहा हूं। दे थिंक ओनली आई एम जस्ट बिकमिंग अ वैष्णव, आई एम जस्ट बिकमिंग अ डिवोटी। ठीक है, इसका प्रश्न समय क्या है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न यह है कि दीक्षा के बाद ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दीक्षा के पहले एक क्लास नहीं सुने क्योंकि सुने नहीं, दे डोंट हियर, दैट इज अ प्रॉब्लम। जब दीक्षा जिस दिन हुआ प्रभुपाद जी का प्रसंग में हमने क्या क्या बताया, प्रभुपाद जी बक्सी ठाकुर ने क्या कहा, हाँ ओके यस ही हियर्स वेरी अटेंटिवली, ही डजंट गो अवे। अब देखिए बक्सी ठाकुर उनका क्या स्थान है और प्रभुपाद जो कह रहे हैं सारे लोगों के सामने ये जो है बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो सत्संग में बैठते बैठते उठ के जाते नहीं है, वो छोड़ के नहीं जाते। इसका अर्थ क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने भी ऐसा करते थे, लोग ऐसे थे। इट मीन्स दैट, तो ये मैंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है, जो भक्त शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, प्रवचन में आके बैठते हैं, ध्यान से सुनते हैं, वो व्यक्ति कभी अपराध नहीं करता है। वो शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करने की लालसा में है, अपनी दीक्षा को कभी नहीं छोड़ता है। तकलीफ क्या है? हम दीक्षा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, साथ साथ में शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। यह जो दीक्षा को संरक्षण करके रखना है, शिक्षा को ग्रहण करना होगा। जो कल दीक्षा है उसके पहले आज क्या हो रहा है, वो शिक्षा हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि आपकी दीक्षा जो है अमूल्य वस्तु है, अमूल्य रत्न है, जो अनेकों जन्म जन्मांतर से जो प्राप्त नहीं हुआ है, भटकते भटकते ढूंढ ढूंढ के आज के दिन वो प्राप्त हो रहा है, कल के दिन प्राप्त होने वाला है, उसको संभाल के रखना है, कृष्ण तक लेके जाना है। वो तभी संभव है जब इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ठीक है, यही तकलीफ है, और कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, सबको जल्दी है? लोकाध्यक्ष प्रभु सबको जल्दी है क्या? एकादशी है, थोड़ा तपस्या और कर लेंगे, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा प्रश्न है, आपका हरिनाम दीक्षा हो गया? नहीं हुआ तो इसका प्रश्न बाद में पूछना चाहिए था। एनी हो, आपने पूछा, तो इनका प्रश्न ये है, प्रभु जी हरिनाम दीक्षा तो समझ में आ गया है, ब्राह्मण दीक्षा क्या है? और वो प्रश्न पूछने वाले वो है अभी तक उनका हरिनाम दीक्षा भी नहीं हुआ है। अच्छा, मैं भी ऐसे एक बार भौतिक दृष्टिकोण में एक बार प्रश्न पूछा था। जब मैं फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में था, उस समय में मैं पूछा था मेरे टीचर से कि ये पीएचडी क्या होता है मुझे याद है टीचर ने बहुत डांटा, पीएचडी टेंथ पास करो पहले टेंथ पास करो बाद में पीएचडी लेकिन वैसा टीचर नहीं हो, लेकिन बताऊंगा क्यों। क्योंकि हमेशा ये जो लालसा, मुझे कब दीक्षा प्राप्त होगा, हरिनाम कब प्राप्त होगा, ब्राह्मण दीक्षा कब प्राप्त होगा, ताकि मैं कृष्ण का बहुत सेवा कर सकूं, ये लालसा होना चाहिए, शुड हैव दैट, क्योंकि आपके अंदर है, इसलिए आपने प्रश्न पूछा। तो हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर जो है आपकी सीरियसनेस में नहीं है, आपकी सीरियसनेस को क्या बोलेंगे, गंभीरता के ऊपर नहीं है, आपकी शुद्धता के ऊपर है। आपके अंदर सात्विक गुण जैसे विकास होते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेने की आपको योग्यता प्राप्त होता है। जैसे मंदिर का अर्चवी ग्रह का जो पूजा, उनको भोग बनाना, उनको पूजा करना, वो करने के लिए बहुत शुद्ध आचरण होना चाहिए। मान लो कि वो शुद्ध आचरण नहीं है, इसका अर्थ क्या हम सेवा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मंदिर साफ करो। मंदिर की जो सफाई है वो ब्राह्मण दीक्षा के बिना भी कर सकते हैं, वो साफ करते करते हम भगवान की धाम में जाएंगे, लेकिन अर्चव विग्रह की भी सेवा करना होगा। ये ब्राह्मण दीक्षा खास करके अर्चव विग्रह की सेवा के लिए ही है। हरिनाम दीक्षा के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान की धाम में जा सकते हो, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते, श्रीमताम सुगत कृष्ण कृष्ण कथा श्रवण करते करते, पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्तो भद्राणि विनोति सुरुत्सताम नश्च प्रायश भद्रे सन्त्यं भावत सेवया भगवदुत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैश्चिकीं तथा रसतमो भावः कामलोभादेश्चे चेते तेरनाविद्धं सितं सत्वे प्रसीदति। सत्वगुण का प्रकाश होता है, तो ये सत्वगुण जैसे प्रकाश होता है एक भक्त के हृदय में, तब भक्त की आचरण में, तब गुरु देखते हैं ठीक है तुम्हारा परमिशन है। जो व्यक्ति भगवान के लिए कुकिंग करते हैं और पूजा कर रहे हैं, उनको जो जितना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है, वही आध्यात्मिक लाभ मंदिर साफ करने के द्वारा प्राप्त होता है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन ये भगवान का विग्रह का अंतरंगिक सेवा का अधिकार है, तो इन दोनों में केवल अधिकार भेद है, गंभीरता का भेद नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो नियम बहुत कठोर नियम, क्वालिफिकेशन योग्यता है, जो ब्राह्मण दीक्षा के लिए जरूरत है, उसको उन्होंने हरिनाम दीक्षा में लगा दिया। इसलिए हरिनाम दीक्षा भी इतना महत्वपूर्ण है जितना ब्राह्मण दीक्षा है, इसको सस्ते तरीके से नहीं लेना चाहिए। वैसे ब्राह्मण दीक्षा का विशेष गुणों को देखा जाता है, हाँ ये शांति से बैठता है, पढ़ाई करता है, शास्त्रों का अध्ययन झास्त जानता है, शुद्धता है, रोज कम से कम दो बार नहाता है ये सब गुणों का विकास जैसे होता है तब उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है। ठीक है, हाँ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग दीक्षा, यू आर इंडेटेड, ओके हाँ, लाइबिलिटी इज अ टू कमर्शियल टर्म, ओके यू आर इंडेटेड, हाँ आप ऋणी हो। ठीक है, हाँ जैसे इनका प्रश्न ये है कि जैसे हम, हमारे पिताजी भौतिक दृष्टिकोण से हमारे पिताजी ने हमको जो प्रदान किया उसके लिए हम उनके प्रति ऋणी हैं, वी आर इंडेटेड टू देम। पिताजी का जाने के बाद भी हम उनके प्रति ऋणी हैं, वैसे ही हमारे गुरु के प्रति क्या हमारा ऋण है, यही प्रश्न है। व्हाट इज अवर, श्रील प्रभुपाद जी के भाव में इस प्रश्न का जवाब ये है, हमारे गुरु का ऋण को कभी चुकाने से, चुकाने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे प्रयास करेंगे, हमारा जो गुरु का जो मिशन है, उनका जो मिशन को क्या बोलेंगे, आंदोलन है, उनकी इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयास करना। श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि अपने शिष्यों को, यू आर ऑल हेल्पिंग मी इन फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, मेरी इच्छा, मेरी गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप सब मुझे मदद कर रहे हो। और ये व्यास पूजा के दिन, भक्ति ठाकुर के व्यास पूजा के लेक्चर देते देते लास्ट में ये बात कहते हैं, आई थैंक यू ऑल वेरी मच, यू आर ऑल हेल्पिंग मी in fulfilling the desire of my spiritual master, Jaya Vishnupad Paramahansa Parivrajaka Acharya, His Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada. And actually, He is sending you all to accomplish His desire through me. तो प्रभुपाद ने कहा अपने शिष्यों को उनके गुरु महाराज के व्यास पूजा के दिन लेक्चर देते हुए, आई थैंक यू ऑल वेरी मच, आप मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आज सब मेरी गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मुझे मदद कर रहे हो और आप सबको भेजने वाले कौन है मेरे पास, मेरे गुरु ही आपके आप सब लोगों को मेरे पास भेज रहे हो। तो ये प्रभुपाद जी का भाव को स्वीकार करते हमारा भी यही भाव होना चाहिए, हमारे गुरु का इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, उसके द्वारा उनका ऋण चुकाने का प्रयास मात्र कर सकते हैं, ऋण चुका नहीं सकते, प्रयास मात्र कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं ऋण चुकाता हूं तो अच्छी बात नहीं है, कोई व्यक्ति कह सकता है हम ऋण कैसे चुका सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है ऐसे बैठे रहेंगे, वो भी नहीं, हमको ऋण चुकाना भी है, प्रयास करना है, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि इस्कॉन में माताओं को ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है, ये कौन सा विधि है, कौन से शास्त्र में वर्णन है, लेकिन आपका प्रश्न है, ये प्रश्न श्रील प्रभुपाद जी से भी पूछा गया था, तो इसका जवाब मैं दूंगा, देने से पहले माताओं से माफी चाहता हूं, मैं कुछ ऐसे बात कहूंगा तो आपको दुख लग सकता है, लेकिन दुख की बात नहीं है, लेकिन यह आपकी बढ़ोतरी की बात है, आपकी महत्ता की बात है। कभी कभी जैसे हम बाहर जाते हैं तो प्रचार करने के समय किसी को, एक स्त्री को हम बोलेंगे माता जी जरा इधर बैठिए, गुस्सा हो जाती है, हमको माता जी कहा